अहेतविरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवयोजल्पै स्थैर्यं समानमहरं मनुमानिनीना रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्किताय
सबको स्वागत करते हैं रविवार के तीसरे के कार्यक्रम में। आज हम पढ़ रहे हैं भागवत के पहले स्कंद में भूमि अपने विरह भावना को प्रकट कर रही है, क्योंकि श्रीदेवी और भूदेवी दोनों भगवान विष्णु के पत्नियां हैं। तो भूदेवी जब भगवान अपने स्वधाम चले जाते हैं उसके बाद ये श्लोक बोलते हैं। इस तरह भगवान, क्योंकि भगवान जब वृंदावन में थे उसके बाद मथुरा चले गए, मथुरा में 13 साल 7 महीने रहे, उसके बाद मथुरा को भी छोड़कर द्वारका चले गए। लेकिन वृंदावन हो, मथुरा हो, द्वारका हो, हमेशा भगवान की पद कमल भूमि के ऊपर था, इसलिए भूमि बहुत कुछ थी पहले। लेकिन भगवान जब अपने धाम वापस चले गए तभी इधर बता रही है कि हे भगवान, अभी आपके संपर्क में न रहने के कारण वो ग्रह भावना को महसूस कर रही है। तो ये श्लोक में बताया गया है कैसे भगवान प्रेम अवलोक रुचिरस्मितवल्ग जल पाई। दूसरे पंक्ति में बताया गया है कि भगवान के अवलोक प्रेम से जो भगवान दृष्टि डालते हैं और अवलोक करते हैं और उनका मंदहास और उनका मधुर बोलना, इसके बारे में इस वक्त में प्रशंसा किया गया है। तो कुछ दिनों के पहले हम लंदन और अमेरिका यात्रा में प्राण में हम गए थे, उधर रिजोनर लोकनाथ स्वामी महाराज को सुनने को मिला। उधर रविवार को हजारों लोग आते हैं लंदन के मंदिर में, कभी कभी उनके मंदिर में 3-4 संडे फिश करते हैं लंदन में, एक ही दिन में 3-4 कार्यक्रम संडे को, इतने लोग आते हैं। तो उधर महाराज बता रहे थे, एक सुंदर गीत गा रहे थे, और गीत को मैं ढूंढना मिला नहीं मुझे, सब जगह ढूंढा मैंने। और गीत ऐसा गीत है, मैया चांद की लौना, ऐसे गाते हैं महाराज। तो वो गीत में बता रहे थे भगवान कृष्ण की मधुरता के बारे में। जब कृष्ण छोटे बालक होते हैं तभी यशोदा और मैया उनको अपने गोद में लेकर वो दूध पिलाती है, आनंद लुटती है। लेकिन एक दिन गोपाल बोलते हैं यशोदा मैया को, मैया मुझे खिलौना चाहिए। बोला उन्होंने, क्या खिलौना चाहिए? बोला मुझे, उन्होंने आसमान को दिखाया तो चांद खिलौना चाहिए। तो यशोदा ने बोला कि वो चांद खिलौना नहीं है और तुमको मिल नहीं सकता है, वो ऐसे बोला उन्होंने। तो भगवान रो पड़े, बोले कि मुझे वो खिलौना चाहिए ही चाहिए जरूर। तो ऐसे मैं सोचा क्या किया जाए ये बच्चे को, तो भगवान बहुत हट करने लगे। तो भगवान नीचे उतर गए यशोदा मैया के गोद से और बोलने लगे कि देखो मैया, अगर आप चांद खिलौना नहीं दोगी तो मैं आपके गोद में नहीं सोऊंगा, मेरे तंडे जमीन में सो जाऊंगा। ऐसे उन्होंने हट किया। उन्होंने बोला देखो, ये बलराम जी, बलराम की जो शिका है बहुत मोटा है, बहुत सुंदर है, आपको मालूम है क्यों इतना सुंदर है? तो ऐसे तो मैंने बोला मालूम नहीं मुझे क्यों इतना सुंदर है। तो कृष्ण ने बोला कि क्योंकि बलराम जी गाय के दूध पीते हैं ज्यादा, इसलिए उनका शिका बहुत मोटा है, लेकिन मैं आज से मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा जब तक आप चांद किराना नहीं दोगी, ऐसे बोला उन्होंने। उन्होंने ये भी बोला देखो अगर अभी आप चांद किराना नहीं दोगी तो मैं सारे वृंदावन में घूमकर सब लोगों को बताऊंगा कि मैं नंद बाबा की मैं बच्चा हूं ऐसे। तो ऐसे मैंने बोला इसमें क्या गलती है, जाओ तुम सब जगह जाकर बोलो कि तुम नंद बाबा के बेटा है। लेकिन कृष्ण ने बोला नहीं नहीं मैं उनको बोलूंगा कि नंद बाबा का मैं बेटा हूँ लेकिन यशोदा मैया का नहीं, ऐसे बोलूंगा,
ऐसा हट गया भगवान ने।
तो इस तरह का एक गीत है, बहुत मधुर गीत है, ब्रज में गाया जाता है इस तरह का गीत। तो भगवान की अपने भक्तों के साथ जो बर्ताव है बहुत मधुर होता है इधर जैसे बताया गया है, इसलिए भगवान को अंग्रेज में बोलते हैं एम्परर ऑफ स्वीटनेस, एम्परर ऑफ मधुराधिपते अखिलम मधुरम, इसको अंग्रेज में बोलते हैं एवरीथिंग इज स्वीट अबाउट द एम्परर ऑफ स्वीटनेस। वो भगवान जो है मधुरता के अधिपति हैं, इसलिए उनके संबंध में जो भी है सब कुछ मधुर है। तो वो गीत में वल्लभाचार्य गाते हैं, बहुत सुंदर गीत है, उसमें गाते हैं हरहरम मधुरम सदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, ऐसे गाते हैं कि भगवान के जो अदर मधुर हैं, उनके चेहरा मधुर है, उनके नयन मधुर हैं, कमल नयन है, उनके मुस्कान बहुत मधुर है, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, भगवान के हृदय भी मधुर है और उनका चलना भी मधुर है, इस तरह वो गाते हैं। और उसी गीत में ऐसे आता है कि इतना ही नहीं भगवान के जो बोलना जो है जिस तरह ईश्वर में बताया गया है वो भी बहुत मधुर है, गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम, भुक्तम का मतलब है खाना, भगवान जब भोजन करते हैं वो भी देखने के लिए बहुत मधुर है। वृंदावन में भगवान अपने बाल सखाओं के साथ मित्रों के साथ बैठकर यमुना के किनारे में प्रसाद लेते हैं, भोग लेते हैं भगवान, तो उस समय जिस तरह ये कमल के बीच में मकरंद है इस तरह भगवान बीच में बैठे हैं और उनके आजू बाजू में जो वाल बाल बैठे हैं वो सब कमल के पंखुड़ियों के समान है, आजू बाजू में बैठे हैं पूरा, और इस तरह ग्वाल बालकों के बीच में एक तरह का स्पर्धा होता है, एक प्रेम का स्पर्धा कि मैं ही भगवान के सामने बैठूंगा, ऐसे सबको इच्छा होता है भगवान के सामने बैठने के लिए। देखिए इस भौतिक दुनिया में भी स्पर्धा होता है, कंपटीशन होता है, लेकिन भौतिक दुनिया की स्पर्धा जो है उसमें ईर्ष्या होता है, एक दूसरे को टांग खींचने का ईर्ष्या होता है, लेकिन वृंदावन में बताया गया है कि जब भगवान चलते हैं तो बाल बाल कभी कभी उनके पीछे भागते हैं उनको पहले छूने के लिए, मैं पहले भगवान को छूंगा इस तरह सोचकर वो भागते हैं, इससे भगवान के आनंद को वो बढ़ाते हैं इस तरह करने से। इस तरह जब भगवान भोजन लेते हैं आसपास में ग्वाल वाल बैठते हैं तो भगवान सोचते हैं कैसे ये सब बालकों को मैं संतुष्ट करूं, इस तरह सोचते भगवान क्या करते हैं ऐसे भगवान पूरा रोटेट होता है ऐसे ऐसे इधर से उधर पूरा सारे साइड में, तो सब ग्वाल बालकों को दिखाई देता है कि मेरे सामने भगवान बैठे हैं ऐसे। तो इस तरह भगवान जब नृत्य भी करते हैं गोपिकाओं के साथ उस समय भी बताया गया कि हर गोपिका स्त्री सोचती है कि भगवान मेरे साथ ही नाच रहे हैं ऐसे, तो कैसे करते हैं भगवान, तो भगवान क्या करते हैं ऐसे एक एक गोपी के साथ नाचते हैं रास नृत्य में, तो इस तरह नाचते समय हर एक गोपी सोचती है कि मेरे साथ भगवान नाच रहे हैं ऐसे। ऐसे शास्त्र में बताया गया है कि कभी कभी भगवान एक ही होते हैं लेकिन हर एक के साथ नाचते हैं, मानो उनको दिखता है कि भगवान मेरे साथ नाच रहे हैं, लेकिन कभी कभी भगवान अपने को विस्तृत भी करते हैं, जैसे हर दो गोपियों के बीच में एक भगवान है, ऐसे हम राशन ऋतु में हम देते हैं। कभी कभी अगर आप एक मशाल को लेकर ऐसे घुमाते हो, घुमाने से एक सर्कल दिखता है, फायर ब्रांड है ना। इस तरह भगवान जब तेजी से नाच रहे थे तभी दिखाई दिया कि भगवान हरेक गोपी के साथ में थे, ऐसे। तो इस तरह वगैरह वर्णन किया गया है शास्त्र में। तो जब बताया गया है कि गीतम मधुरम पीतम, पीतम मधुरम, पीतम मधुरम का मतलब उनका पीताम्बर जो है वह भी मधुर है, और भुक्तम मधुरम खाने में भी मधुरता है, भगवान की खाने को अगर कोई भगवान भोजन करते हुए देखते हैं वो भी मधुर है। आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में भगवान को जो भोग चढ़ाया जाता है, शायद इस हाल जितना बड़ा है उतना भोग चढ़ाया जाता है उनको रोज, भगवान को ऐसे 56 भोग, और वो भी बहुत मात्रा में, उनका ब्रेकफास्ट भी बहुत हेवी होता है, उतना ही होता है। ऐसे भगवान बहुत बड़ा भोग लेते हैं, ऐसे भक्त बहुत प्रेम से खिलाते हैं भगवान को ऐसे। और सुत्तम मधुरम बोलते हैं, भगवान का सोना भी बहुत मधुर है, भगवान की सोने को देखने के लिए अनेक गोपिकाएं आती हैं, जो यशोदा मैया के सखियां हैं वो सब भगवान की सोने की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। तो भगवान आंख बंद करके सोते हैं, वो देखने में भी बहुत मधुर है। जैसे रंगनाथ में भगवान सोने के मुद्रा में है, ऐसे हाथ होते हैं वो हमेशा के लिए सोते हैं, उधर उठते नहीं, कभी उठकर बैठते ही नहीं, हमेशा ही सोए हैं। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी हृद्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्सांकं कस्तुभोद्भासितांगं पुण्योपेतं पुंडरीकायताक्षं विष्णुं वंदे सर्वलोकैकनाथं। सब लोकों के नाथ हैं, लेकिन वो उनका आकार शांत है, और वो लेटे हैं किसमें, भुजग शयनम, एक सर्प के बिस्तर में लेटे हैं, अनंत शेष में लेटे हैं भगवान। ऐसे प्रभु जी बताते हैं उनके एक तात्पर्य में, भगवान ऐसे जब लेटे हैं शांति से, तभी उनके स्वप्न में ये सारे दुनिया को रचाते हैं। अगर स्वप्न में इतने बड़ा दुनिया रचा सकता है कोई व्यक्ति, उठ जाएगा तो क्या होगा पता नहीं। हम लोग अपने नींद में हम स्वप्न करते हैं, लेकिन वो स्वप्न सब टूट जाता है सुबह जब उठते हैं, लेकिन भगवान ऐसे निद्रा में, योग निद्रा में अधकुला आंखों के साथ क्या करते हैं, सारे दुनिया की रचना करते हैं भगवान ऐसे। इसलिए भगवान की सोना भी बहुत सुंदर है, भुक्तम मधुरम, सुप्तम मधुरम, रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम, ऐसे उनके रूप के बारे में वो वर्णन करते हैं।
वेणुर मधुरा, वेणुर मधुरा, पाणिर मधुरा, कादौ मधुरा, नृत्यम नृत्यम मधुरम, सत्यम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम।
तो गाते हैं भगवान के वेणु भी बहुत मधुर है, क्योंकि वेणु से भगवान क्या करते हैं, जब भगवान आवाज करते हैं उनके वेणु से हरेक गाय का नाम निकलता है, अलग अलग ध्वनि में बजाते हैं भगवान। शाम को जब गायन को वापस लेकर घर आना है तो गाय तो घूम जाते हैं इधर उधर, लेकिन गायन को जब, जैसे हमारे बीड़ बैग में जो मणि होता है, भगवान के पास भी मणि है, एक एक 108 गायन के लिए एक एक मणि है, ऐसे है 15 मणि होता है। जैसे अलग तरह की गायें हैं, कोई मृदंग मुखी गाय है, उसका मुख मृदंग जैसा है, ऐसे अलग अलग नाम है गायों का वृंदावन में। तो भगवान जब वेणु में बजाते हैं तो वो गायें सुन लेते हैं, वो हमको बुला रहे हैं अभी, तो तुरंत आ जाते हैं। तो मैंने जब पहले सुना था इसको, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, कैसे कोई व्यक्ति किसी गाय को नाम से बुलाने से कोई गाय आ सकता है, क्योंकि अगर कोई मनुष्य को बुलाएंगे तो मनुष्य आ सकता है, कोई गाय को बुलाने से कैसे गाय आएगा। फिर मैं वृंदावन में गया था, आजकल भी आप देख सकते हैं ये एक कार्शनी गौशाला है, आज भी आप देख सकते हैं रमण रेती में। तो मैं जब गया था उधर के जो लड़का है उसने बोला मुझे कि इधर के गायें आप नाम से बुला सकते हो आ जाएंगे। तो मुझे थोड़ा शंका हुई, तो हम गए, खुद गए, तो उन्होंने अलग अलग नाम बोला, तो मैं अलग अलग नाम को बुलाया, गाय आ गए एक एक करके। तो गाय आने के बाद उन्होंने कान में दिखाया और गाय का वही नाम लिखा था, उनके कान में लिखा है अलग अलग गाय का नाम। आज भी आप ट्राई कर सकते हैं आप दान में। तो इस तरह भगवान जब बुलाते हैं, भगवान मुख से भी बोलते नहीं, वेणु से बुलाते हैं उनको, इसलिए उनके वेणु भी बहुत मधुर है। तो गाय कभी कभी गाय क्या करते हैं, भगवान बुलाने के बाद भी नहीं आती हैं, क्योंकि वो इच्छा करते हैं कि भगवान मेरे नाम बार बार बुलाते रहे इस तरह, और तीन चार बार बुलाने के बाद आते हैं वो बाद में। क्यों आ जाती हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि भगवान को दुख न हो जाए, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे वापस तो भगवान सोचेंगे कि हम घूम गए, इसलिए वापस आ जाते हैं बाद में इस तरह गाय। तो भगवान के वेणु भी बहुत मधुर है, तो वृंदावन के सब ब्रजवासियां भगवान के वेणु की मधुर ध्वनि को सुनकर ही जब भगवान वंशीवट के नीचे कड़ों पर जब बजाते हैं तभी सब गोपियां आती हैं, भगवान नाचते हैं प्राचीन नृत्य में उनकी वेणु की ध्वनि सुनकर। तो जो शुद्ध भक्त हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं, ऐसे बताया जाता है कि उनको भगवान के वेणु का ध्वनि सुनाई देता है उनको। जब एक व्यक्ति को भगवान की वेणु का ध्वनि सुनता है तभी उसके हृदय में जो भी कलमश है, जो भी बौद्धिक दुनिया के भौतिक इच्छाएं, वो सब खत्म हो जाते हैं, पूर्ण तरीके से नष्ट हो जाते हैं, ऐसे बताया गया है। इसलिए शुद्ध भक्त ऐसे एक गोपी बोलती है दूसरी को, हे गोपी तुम यमुना के तट में वंशीवट के पेड़ के नीचे जो खड़े हुए गोविंद जी जो अपनी मुरली बजा रहे हैं और चंद्रमा की रोशनी में उनके ओंट चमक रहे हैं, ऐसे जो गोविंद जी की सुंदर ये वेणु की ध्वनि को तुम सुनो मत, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि अगर तुम सुनोगी तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे हृदय में जो भी भौतिक वासनाएं इच्छाएं हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और तुमको इस भौतिक दुनिया में रुचि नहीं रहेगा, तुम पूर्ण तरीके से भगवत धाम पहुंच जाओगी। तुम इस तरह के रूप गोस्वामी बताते हैं श्लोक। तो कभी कभी ऐसे श्लोक क्यों बोला गया है, तुम उसको सुनो मत का मतलब है सुनो ऐसा है। तो ये क्यों ऐसे बोलते हैं, असली में हरेक व्यक्ति को इच्छा करना चाहिए कि भगवान की शुद्ध भक्ति के द्वारा मेरे हृदय में जो भी भौतिक वासनाएं हैं वो सब खत्म हो जाए, ऐसे चाहना चाहिए। इसलिए रेणु मधुरा, रेणु का मतलब है भगवान की चरण रेणु जो है वो भी बहुत मधुर है। एक ऐसे एक व्यक्ति के चरण के नीचे जो मिट्टी है वो कैसे मधुर हो सकता है। तो भगवान जब एक छोटे बालक के रूप में सब सारे दुनिया का संहार होने के बाद जब प्रलय आता है, प्रलय के बाद भगवान एक वटपत्र में लेटे हुए हैं, वटपत्रशाही ऐसे बोला गया भगवान का नाम है। तो भगवान उसमें लेटे हुए क्या करते हैं, अपने चरणों को लेकर अपने मुख में डालकर वो आस्वादन लेते हैं। आपने देखा होगा वो चित्र है, वो छोटा बालक बहुत सुंदर घुंघराले बालों के साथ, कमल नयनों के साथ, लाल वोंटों के साथ, बहुत बहुत सुंदर चेहरे के साथ, तो बालकृष्ण का तस्वीर आपने देखा होगा, जो अपने अपने ही वोंट अपने ही मुख के अंदर अपने पांव को डाले हैं, ऐसे ऐसे एक बच्चे को आपने देखा होगा तस्वीरों में हम देखते हैं। तो ये भागवत में बताया गया है कि ऐसे भगवान क्यों करते हैं, अपने ही पैर को अपने मुख में क्यों डालते हैं, क्योंकि भगवान ये परीक्षा करना चाहते हैं कि मेरे भक्त लोग क्यों मेरे चरण रेणु का गुणगान करते हैं, मेरे चरण रेणु में क्या इतना स्वाद है कि मेरे भक्त हमेशा मेरे चरणों के रेणु का आकांक्षा करते हैं। इस तरह सोचकर भगवान क्या करते हैं, अपने ही पांव को अपने मुख में डालकर उसका रुचि लेकर देखना चाहते हैं। इस तरह भगवान के पदकमल में आश्रय जो लेते हैं उनको अनुभव है कितना वो आनंददायक है, क्योंकि ये आनंद कैसा है, इस भौतिक दुनिया में जो घूमने वाली चिड़िया जो होती है अंतिम अपने घोंसले में जब अंतिम आती है तभी उसको शांति प्राप्त होता है। इस तरह भगवान के पदकमल में भी एक घूमने वाली जीवात्मा को क्या मिलता है, आश्रय प्राप्त हो जाता है, शांति सुख और आनंद और आश्रय सब प्राप्त हो जाते हैं उसमें। तो भगवान के वेणु भी मधुर है, रेण भी मधुर है। पानी, पानी का मतलब है हाल, पानी मधुरा पाद मधुरा, बोलते भगवान के हाथ भी मधुर है और उनके पैर भी मधुर है, ऐसे बताते हैं। भगवान के हाथ क्यों मधुर है, ऐसे बताया गया कि भगवान के हाथ जो है वो एक कमल के पंखड़ियों के समान है, ये कमल के समान है। जब गोपियां नाच रही थी ये राज नृत्य में, तभी उनके चेहरे में पसीना छूटने लगी जैसे मोती के समान। तो भगवान अपने हाथों से उन पसीनों को ऐसे निकाला अपने हाथों से, तो गोपियों को लगा कि कोई ये कमल के साथ उनके पसीनों को निकाल रहे हैं, ऐसे लगा, क्योंकि भगवान के हाथ जो है उससे दिव्य सुगंध निकलता है भगवान के हाथ से, और उतना नरम भी है कोमल कमल जैसे। तो क्या श्लोक है, नम पंकज नाभाय नम पंकज मालिने नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रय। तो भगवान के पांव भी कमल के समान है, भगवान के आंख भी कमल के समान है, भगवान के हाथ भी ऐसे ही है ऐसे। तो ऐसे बताया जाता है कि भगवान के हाथ कितना सुगंधित है, अगर हमें जानना है तो हमें क्या करना चाहिए, इस भौतिक दुनिया के सबसे सुगंध देने वाली वस्तु क्या है आपको मालूम है, कस्तूरी है, कस्तूरी। तो कस्तूरी से भी ज्यादा सुगंध है भगवान के हाथ में, होना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि दुनिया में जो भी है सबका स्रोत कौन है, भगवान ही। तो अगर भगवान की आवाज अगर हम समझना चाहते हैं कितना मीठा होगा, तो हमें कोयल का आवाज सुनते हैं, कोयल का इतना मीठा होता है आवाज, तो इससे भी ज्यादा मीठा होना चाहिए भगवान का, क्योंकि कोयल का मधुर आवाज तेर से आता है भगवान से आता है ऐसे। तो गाते हैं कि पाणी मधुरा, भगवान के हाथ भी मधुर हैं और पाद मधुरा। तो जब भगवान जंगल में जाते हैं तब गोपियां देखती हैं भगवान और उनके ग्वाल बालक साथ में जाते हैं और गाय बकरे सब साथ में जाते हैं जंगल में, और गोपियों के आंख उनके दृष्टि पूरा किधर है, भगवान के पांव में है, क्योंकि भगवान के पांव जो है वो कमल के समान है, लेकिन जंगल में जाते समय जो पत्थर हैं घास फूस हैं उनके ऊपर जो भगवान रखते हैं तभी उनके पांव जो है और भी लाल हो जाते हैं, इसलिए गोपियां गाती हैं, चलसे यद्रजा चारयन् पशु मलिन सुंदरं नाथते पदं शूलतृणां कुरये सीदते तेनः कलिलतां मनः कांत गच्छति। वो गाते हैं चलसी अत ब्रजात, ब्रज में है भगवान जब आप चलते हो जंगल में, चारण पशुन, पशुन का मतलब गाय बछड़े वगैरह, उनको चराते हुए जब आप जंगल में जाते हो तब हम लोग देखते हैं क्या, नलिन सुंदर नाथते पदम, आपके सुंदर पांव जो है उसको हम देखते हैं कि वो घास फूसों में और पत्थरों के ऊपर जब आप चलते हैं तो हमारे हृदय में ये लगता है कि एक हमारे हृदय ये कांटा से चुभ गया हो, ऐसे में लगता है जब आपके पांव पत्थरों को छूते हैं तभी। तो भक्तों के हृदय में भगवान के संबंध में इस तरह की भावनाएं हैं, उनके क्योंकि भगवान को जो तकलीफ होता है वो इससे भक्त के हृदय में तकलीफ होता है उसको, ऐसा है। इस तरह जब भक्त को तकलीफ होता है भगवान के हृदय में तकलीफ होता है भगवान को, ऐसे ऐसा होता है। तो इसे भगवान के सुंदर पदकमलों के बारे में वर्णन आता है भागवत में ऐसे, और गाते हैं नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इधर वर्णन है भगवान के नृत्य की मधुरता के बारे में, भगवान कैसे नृत्य करते हैं। तो ऐसे एक लीला आता है वृंदावन में, एक बार एक गोपियां और भगवान नाचते हैं बहुत सुंदर तरीके से राजतंत्र में। तो एक बार ऐसे गोपियां नाच रही थी, अचानक सब गोपियां रुक गई और गोपियों ने बोला कि अभी हम मृदंग बजाएंगे, हम करतार बजाएंगे, हम सब वाद्य बजाएंगे। और भगवान को उन्होंने बोला आप नाचो, और भगवान बहुत सुंदर तरीके से नाचने लगे। अगर भगवान के नृत्य की सुंदरता को अगर हमें समझना हो, हम इस दुनिया के भरतनाट्यम को देख सकते हैं, इस दुनिया के एक तुच्छ जीव भी इतना सुंदर भरतनाट्यम कर सकते हैं, तो भगवान कितना अच्छा करेंगे। हम देख सकते हैं भरतनाट्यम में, हम देखते हैं कैसे लोग हाथ पैर को हिलाते हैं, आंखों को हिलाते हैं, चेहरे को गर्दन को हिलाते हैं, है ना, कितना कभी कभी देखने में आसान होता है, जब हम करेंगे तो पता चलेगा कितना कठिन है। तो ये सब कला किधर से आता है, भगवान से ही आता है। तो भगवान बहुत सुंदर तरीके से नाच रहे थे, तो ऐसे भगवान नाचते समय उनके गुंगराले बाल इधर उधर हिल रहे थे, तो सब गोपियां बहुत खुश हो गई देखकर। तो इतने में उधर यशोदा मई आ गई, तो यशोदा मई ने बोला कि देखो ये सारे दिन मेरा बच्चा गाय चरने के लिए जाता है, और शाम को आने के बाद इस तरह आप लोग उसको नचा रहे हो, इस तरह उसको कितना थकावट होगा, छोड़ दो मेरे बच्चे को, ऐसे बोला यशोदा मई ने। तो गोपी ने बोला कि किसने बोला कि ये तुम्हारा बेटा है, तो फिर कौन है ये, ऐसे पूछा यशोदा मई ने, उन्होंने पूछा। तो गोपियों ने बोला कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे नंदा भवन में है, ये दूसरा है लड़का है। तो उन्होंने पूछा ये कौन है, इसका नाम क्या है। गोपियों ने बोला इसका नाम कृष्ण है, नाम भी कृष्ण है, इसका रूप भी कृष्ण का रूप है, इसके गुण भी कृष्ण के गुण है इसके अंदर, ऐसे कैसे हो सकता है। तो गोपी ने बोला तुम जाकर देख कर आओ घर में। तो ऐसे तो मैं गई वापस नंद भवन में, तो देखा कि उधर उनके बेटा बहुत शांति से अच्छी तरह बिस्तर में सोया था। तो वापिस आ गए यशोदा मई गोपी के पास, आकर पूछा उन्होंने ऐसा कैसा है कि इसका नाम भी मेरे बेटा का नाम है, हा? और इसका रूप इतना ऐसे ही है एकदम, जैसे कभी कभी डबल एक्टिंग देखते हैं प्रिंस जैसे, कैसा ऐसा है ऐसे देखा उन्होंने। तो यशोदा मई ने बोला कि इसको देखकर मुझे पता नहीं, मेरे हृदय में भी प्रेम उमड़ पड़ रहा है इसको देखकर भी, ऐसे तो बोला यशोदा ने। तो गोपियों ने बोला कि ठीक है हो सकता है, लेकिन ये हमारे कृष्ण है तुम्हारे नहीं, ऐसे बोला उन्होंने। तो यशोदा ने एक सुझाव दिया कि हे गोपियों, ये कृष्ण आपके कृष्ण को लेके आओ नंदा भवन में, और हम दोनों को नचाएंगे, बहुत सुंदर दिखेगा देखने में, ऐसे उन्होंने सुझाव दिया। गोपी ने बोला कि नहीं नहीं, हम अपने हमारे कृष्ण को हम नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर हमारे कृष्ण और तुम्हारे कृष्ण दोनों मिल गए हमको पता नहीं चलेगा कौन हमारा कृष्ण, तो हमारे कृष्ण को हम हमारे पास ही रखेंगे, ऐसे बोला उन्होंने। तो यशोदा मई ने बोला कि ऐसा क्या है तुम्हारे कृष्ण का, क्या बड़ा महत्व होता है, ऐसे पूछा। तो गोपी ने बोला कि ये जो है ये सब सारे सृष्टि के स्त्रोत्र हैं, ये आदि पुरुष हैं, और इन्होंने सब अनेक राक्षसों को असुरों को मारा है इन्होंने, उनके अंदर इतना शक्ति है, लेकिन तुम्हारे जो तुम्हारा बच्चा है वो छोटा बच्चा है उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, ऐसे बोला राजा रानी ने बोला। तो इसको सुनकर यशोदा मई ने बोला कि तुम लोग को क्या पता, मेरा बच्चा जो है जन्म लेकर दूसरे तीसरे दिन में एक बड़े राक्षसी को मारा उन्होंने, पुतना नाम के ऐसे यशोदा मैया अपने कृष्ण के बारे में बोलने लगी, क्या क्या उन्होंने किया, तृणावर छकड़ा फूल वगैरह बोलने लगी। तो गोपियों ने बोला कि ठीक है, हम आपस में सारे झगड़ा करने की जरूरत नहीं, आप झगड़ा को छोड़ दो, लेकिन अगर आपको इन दोनों की मृत्यु को साथ में देखना है तो हम साथ में लेके आएंगे, लेकिन इन दोनों में कुछ फर्क देखना चाहिए है। इससे राजा ने बोला कि हम इस कृष्ण को एक चंदन का एक बिंद लगा देते हैं, लगाने से आपको फर्क समझ में आ जाएगा है। इसलिए राजा ने एक हाथ में एक चंदन का लेप लेकर उनको बिंदी लगाए थे भगवान को, तो ऐसे दिखाई दिया मानो एक बहुत सुंदर नीले पर्वत में के पर्वत के ऊपर एक चंद्रमा आया हो। इस तरह भगवान के सुंदर नीले शरीर में जब बिंदी लगा गया बहुत सुंदर दिखाई दिया वो। तो सब गोपियां गई नंद भवन में, तो यशोदा मैया जाकर उठाया अपने बच्चे को, वो भी उठ गए। तो उठने के बाद दोनों कृष्ण को साथ में लेकर आकर नचाया, और दोनों इतने सुंदर तरीके से नाच रहे थे, सब गोपियां वाद्य बजा रही थी, अनेक यशोदा मैया की मित्र उनकी सखियां जो है वो सब आ गई देखने के लिए, ग्वाल बाल सब वो भी आ गए सब देखने के लिए, सब लोग देख रहे थे दोनों कृष्ण नाचते हुए ऐसे। और उस तरह जब नाचना चल रहा था गोपियां गा रही थी, इतना तेजी से गोपियां गाई और भगवान और भी तेजी से नाचने लगे, और इतना तेजी से नाचने लगे कोई देख भी नहीं पाए। इस तरह गोल गोल घूम रहे थे ऐसे घूमकर अचानक दोनों कृष्ण मिलकर एक बन गए, और एक होने के बाद तो बिंदी वाले कृष्ण ही रहे बस ना? तो अभी गोपी ने बोला कि अभी बहुत समय हो गया, हम लोग अभी जाने वाले हैं, हम अपने कृष्ण को लेके जाएंगे। हम तो ईश्वर में ही रोने लगी, हे मेरे कृष्ण के रहा। तो उन्होंने बोला राजा रानी को, राजा रानी तुम बड़ी कपटी हो, तुमने छिपा दिया मेरे कृष्ण को कहीं, किधर रखा तुमने बोलो। तो गोपी ने बोला देखो हम लोग तो कुछ बगीचे में नहीं है, हम लोग तो एक नंदा भवन के चार दीवारों के बीच में है, हम लोग इधर हम किधर छिपाकर क्यों हम लेके जा सकते हैं आपके कृष्ण को, हमको पता नहीं आपके कृष्ण किधर, लेकिन हमारे कृष्ण मिल गए हम जा रहे हैं अभी, ऐसे बोल रहे थे। तो यशोदा मैया वो रोने लगी, बोला कि देखो मेरे पास चार बच्चे पांच बच्चे नहीं है, एक ही बच्चा है मेरा, और उसको मत लेके जाओ मुझे दे दो। तो गोपी ने बोला कि ये हमारा है, तो आपका नहीं है। इस तरह जब चलता रहा तो यशोदा मैया नीचे गिरकर ये राजा रानी की पांव पकड़ने लगी कि मेरे कृष्ण को दे दो, आप लेके मत जाओ आप लोग ऐसे। तो उस समय राजा रानी ने पूछा कृष्ण को, ये क्या इस तरह का घटना घट गया आज, आपकी माँ इतना रो रही है, क्या किया जाए। और यशोदा मैया बेहोश हो गई, ऐसे लगा कि वो मरने वाली है। तो कृष्ण बोला वो कभी नहीं मरेगी, चिंता मत करो, क्योंकि मुझे देखे बिना नहीं मरेगी वो। जब उसके हृदय में देखने की इच्छा होता है तो वो मरेगी नहीं, तुम चिंता मत करो। तो राजा ने पूछा कि क्या करना चाहिए अभी। तो कृष्ण बोला कि उनको बोला कि मैं अंदर ही हूँ। तो यशोदा मैया को उठाकर बोला आपके आपका कृष्ण अंदर है और हमारा कृष्ण हमारे साथ है। तो यशोदा मैया तुरंत उठकर भाग कर देखी अंदर, तो कृष्ण सो रहे थे अंदर ऐसे। तो ये लीला कैसे हुई, ये लीला का आरंभ कैसे हुआ मालूम है आपको। ये एक बार कृष्ण राधा रानी की गुणगान कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हे राधा रानी तुम ऐसे जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, आप पढ़ेंगे महाभाव महाभाव प्रकट करने वाली श्रीमती राधा रानी एक ही है, कोई भी जीव महाभाव का अनुभव नहीं कर सकता है, क्योंकि वो प्रेम का भंडार है श्रीमती राधा रानी। तो ऐसे भगवान ने उनका गुणगान किया कि तुम अंतरंग शक्ति हो और तुम ही तुम्हारे दृष्टिकोण जब किसी जीव के ऊपर तुम डालते हो तभी वो जीव के अंदर भक्ति भावना का चिंगारी उसको प्राप्त होता है, भक्ति भावना उदय होता है किसी जीव के हृदय में। और अगर कोई जीव मेरा आश्रय लेता है लेकिन तुम्हारा आश्रय नहीं लेता है तो वो कभी भी मुझे पहुंच नहीं सकता है। इस तरह भगवान उसको गुणगान कर रहे थे, और भगवान बोले कि तुम इतने उच्च कोटि के तुम मेरे भक्त हो कि तुम हमेशा मेरे आराधना में मेरे सेवा में तुम लगे हो, इस तरह भगवान गुणगान करते हैं। ऐसे गुणगान करते करते भगवान ने राधा रानी को बोला कि तुम्हारी महिमा इतना श्रेष्ठ है कि यशोदा मई को भी तुम्हारे पांव पकड़ना पड़ेगा, ऐसे भगवान ने बोला। जब राधा रानी ने सुना तुरंत उन्होंने रोक दिया कृष्ण को, हे कृष्ण क्या तुम बोल रहे हो, तुम बोलते समय कभी कभी ऐसे ही चापलूसी करते हो तुम, ऐसे राधा रानी ने बोला कृष्ण को। तो कृष्ण ने बोला कि मैं चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, देखो भविष्य में ये घटना घटेगी जिसमें तुमको पता चलेगा कि यशोदा मई भी तुम्हारे पांव पकड़ेगी, ऐसे भगवान ने बोला था उनको। उस समय ये लीला, उसके बाद भगवान ने लीला उठाया ये लीला को ऐसे। तो इस तरह नृत्यम मधुरम ऐसे बताते हैं भगवान के नृत्य जो है वो बहुत मधुर है। भगवान के धाम में ये नृत्य हमेशा के लिए चलता है। जैसे भगवान ग्वाल बालकों के साथ गाय चरण के लिए गोचरण लीला जो है रोज होता है, लेकिन हर एक दिन जब होता है वो लीला में अलग अलग तरीके से अलग अलग दिन अलग अलग तरह की लीलाएं होती हैं, क्योंकि योग माया जो है वो अलग अलग लीलाओं को रचाती है ऐसे हर एक दिन कृष्ण के द्वारा और उनके मित्रों के द्वारा ऐसे। तो सक्षम मधुरम बताते हैं क्योंकि बताते हैं भगवान की सख्यता, भगवान के जो सखा जो है भगवान के मित्रता में बहुत आनंद हो जुड़ते हैं ऐसे। तो मधुराधिपति, मधुर के अधिपति का मतलब है प्रेम और मधुरता के भंडार है भगवान, मधुराधिपति अकेला मधुरा। तो मैं भगवान कृष्ण के बारे में बहुत कुछ चीजें में बता रहा था, ऐसे ही वर्णन दिया गया है चैतन्य चरितामृत में, राधा कृष्ण एकतनु द्वि देह धरी ऐसे बताया गया है चैतन्य चरितामृत में। राधा और कृष्ण एक तनु है लेकिन दो रूप को अपनाए हैं, क्यों, प्रेम का आस्वादन करने के लिए। वैसे राधा रानी के भी अनेक गुणों के बारे में शास्त्र में वर्णन है। जैसे राधा रानी के अनेक नाम है, एक नाम है राधा रानी का मधुरा, मधुरा का मतलब है ऐसे भगवान मधुराधिपति है वो भी मधुरा है राधा रानी। और उनका नाम है नवभया का मतलब है वो हमेशा तरुण अवस्था में है, कभी भी बूढ़ी नहीं होती है वो नवभया। उज्ज्वल स्मिता का मतलब है वो जब श्रीमती राधा रानी मुस्कान करते हैं शी स्माइल्स ब्रिलियंटली, बचने का उज्ज्वल अस्मिता उनको स्माइल्स वेरी ब्रिलियंटली, उनके मुस्कान से उनके संपर्क में आने वाले कोई भी हो उनके सब दुख मिट जाते हैं उसमें। और उनका दूसरा नाम है रम्यवाक, रम्यवाक का मतलब है जो बहुत मधुर वचन बोलते हैं। जैसे भगवान के बारे में बताया गया है वल्ग जलपाई, भगवान के इतना मीठे मीठे शब्द होते हैं कोई भी व्यक्ति उससे आकर्षित हो जाते हैं। इसे राधा रानी का भी वाक वैसा है, रम्य वाक बोलते हैं, मधुर वचन है उनका। और एक नाम है उनका नर्म पंडिता, नर्म पंडिता का मतलब है वो दूसरे गोपियों के साथ मजाक करने में जोकिंग जो करने में बहुत निपुण है सुमित्रा राधा रानी, उसमें भी रहते हैं। वनिता एक नाम है, वनिता का मतलब है जो बहुत नम्र है। और गुरुस्नेहा, गुरुस्नेहा का मतलब है वरिष्ठ लोगों से वो बहुत प्रेम करती है, जो बूढ़े लोग हैं उनको सेवा करने में उसको राधा रानी को बहुत आनंद मिलता है। सखी प्रणयिता वशा ऐसा बताया गया, इसका मतलब है वो हालांकि राधा रानी अष्ट सखियों का स्रोत्र राधा रानी है, राधा रानी के विस्तृत रूप ही अष्ट सखियां हैं, लेकिन उन अष्ट सखियों के प्रेम के वश में होकर उनके आदेशों को राधा रानी मानती है। इसका मतलब है सखी प्रणयिता वशा ऐसे। और सुबिलसा नाम है, सुबिलसा का मतलब है जो खेल कूद में नाचने में बहुत आनंद लुटती है, तो सुबिलसा बताया गया है। ऐसे अनेक नाम है, जो भी नाम मैंने अभी बताया ये नाम मुझे बहुत प्रिय नाम है इसलिए मैंने बताया, और अनेक नाम है ऐसे आप पढ़ेंगे शास्त्र में। तो राजा रानी जो है एक ओर से देखा जाए तो राधा रानी कृष्ण जैसे ही है, क्योंकि कृष्ण और राधा रानी एक तनु है, लेकिन दुई देह धरी, दो देह को अपनाए हैं। और भगवत धाम में इस तरह के जो हम लीला भी बता रहे थे आपको, ऐसे अनेक लीलाएं अनादिकाल से चल रहे हैं और उनका अंत ही नहीं है। भगवान इस तरह के खेलने में, नाचने में, कूदने में, अपने मित्रों के साथ गोचरण लीला करने में, तो भगवत धाम में किसी भी तरह का ड्यूटी नहीं है, उधर कुछ कर्तव्य नहीं है, ऑफिस जाना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, पेट का पालन पोषण, पेट का भरण करना कुछ करने का कुछ जरूरत नहीं है। ये भौतिक दुनिया में हम देखते हैं कि हर समय कुछ न कुछ तकलीफ रहता है हमारे जीवन में, चिंता रहता है, तकलीफ रहता है, जैसे पांव में दर्द होता है, हमको पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, कुछ न कुछ व्याधि होता है इस दुनिया में, तो बुढ़ापा तकलीफ देता है। लेकिन भगवत धाम ऐसा धाम है जिधर जैसे भगवान और शिव त्रादरणी, वो भगवान के बारे में भी बताया गया है ना, कि भगवान हमेशा तरुण अवस्था में रहते हैं, तो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। ऐसे जीवात्मा सब तरुण अवस्था में रहते हैं, कभी वो बूढ़े नहीं होते हैं, व्याधि नहीं प्राप्त होता है, बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है। तो इस तरह भगवान के दिव्य धाम में अनेक लीलाएं चलते हैं। मैं सिर्फ ये अदरम मदरम गीत का कुछ पंक्तियों को लेकर मैंने आज बात किया, लेकिन बहुत कुछ ऐसे विस्तृत वर्णन आप शास्त्र में पढ़ सकते हैं। लेकिन इस तरह के भगवत धाम को अगर किसी को प्राप्त करना है तो उसके लिए व्यक्ति को अधिकार चाहिए, योग्यता चाहिए, नहीं तो हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये भौतिक दुनिया को भगवान ने ऐसे सृष्टि किया है कि इस दुनिया में कोई भी शांति से नहीं जी सकता है। जैसे अभी बारिश है, जब आप घर जाएंगे हम छतरी को भी पकड़ेंगे फिर भी पांव गीला हो जाता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, है ना, हालांकि हम नहीं चाहते हैं, फिर भी सब धूप करी रहता है, कभी 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 किसी लोगों को स्ट्रोक भी आ जाता है, सनस्ट्रोक, है ना, कभी ठंडी बहुत ठंडी बजता है, किसी को हड्डियों में दर्द होता है, जब बात लोगों को हड्डियों में दर्द होता है तो ज्यादा ठंडी बजता है, जो आस्मा कंप्लेंट है उनको सुबह सुबह प्रॉब्लम होता है। तो ये दुनिया जो है इसमें क्यों भगवान ने ऐसे इतने तकलीफों को रखा है, जन्म और मृत्यु और जरा और व्याधि, इन चीजों को, और क्यों इस तरह के दुनिया स्पर्धात्मक दुनिया है। भगवत धाम में कुछ स्पर्धा नहीं है, जैसे अगर आपको किसी कंपनी में ज्वाइन करना है तो एक पोस्ट के लिए हजारों लोग अप्लाई करते हैं एक कंपनी में, और एक व्यक्ति को मिलता है और बाकी सब लोग पराजित हो जाते हैं। लेकिन भगवत धाम में आपके लिए जो सीट है वो हमेशा के लिए मौजूद है, जब आपको वापस लौटना है लौट सकते हो आप, और वो सीट में कोई नहीं बैठेगा, वो सीट हमेशा के लिए आपको, सिर्फ हमें इच्छा चाहिए जाने के लिए वापस। तो एक भक्त पूछ रहे थे दूसरे भक्त को कि एक भक्त हमारे इस्कॉन संस्था में जुड़कर माला करते थे, स्वर्ण माला तक आ गए हो, लेकिन अचानक दो तीन साल के बाद वो छोड़ दिया, उन्होंने छोड़कर चले गए। तो दूसरे भक्त पूछ रहे थे कि ये कैसे छोड़कर चले गए, ये भक्त में जीवन इतना आनंददायक है, ये कैसे ऐसे छोड़कर वो चले गए, ऐसे उन्होंने पूछा। तो दूसरे भक्त बता रहे थे, अरे भगवत धाम इतना मधुर धाम है, हम तो उस धाम को छोड़कर इधर आ गए, तो इस भौतिक दुनिया में इस्कॉन को छोड़कर बाहर जाना क्या बड़ी बात है, वो वक्त ऐसे बता रहे थे। तो और वो वक्त ये भी बता रहे थे कि भगवत धाम में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है, हम संतुष्ट रह सकते हैं। तो अगर आध्यात्मिक धाम भगवत धाम को छोड़कर हम इस दुनिया में आए हैं, क्या इस दुनिया के कोई भौतिक पदार्थ हमको संतुष्टि दे सकता है? अगर आध्यात्मिक पदार्थ संतुष्ट नहीं दिया हमको तो भौतिक पदार्थ कैसे संतुष्टि दे सकता है? इसलिए इस दुनिया के किसी भी भौतिक चीज को लेकर हम संतुष्ट नहीं होने वाले हैं, जितना भी हम उनके पीछे पड़े अभी भी हम संतुष्ट नहीं होंगे, सिर्फ हमारा प्यास बढ़ता जाएगा। जितना तो दुनिया का नियम ऐसा है, किसी भी पदार्थ को प्राप्त करो हमें और चाहिए और चाहिए। किसी को साइकिल चाहिए, साइकिल प्राप्त हुआ तो स्कूटर चाहिए, उसके बाद कार चाहिए, उसके बाद प्लेन चाहिए, ऐसे और भी चाहिए और भी चाहिए। और इस दुनिया में हमें और भी अच्छी चीज चाहिए, वो भी हमें इच्छा होता है, शांति नहीं है इसका, ये प्यास का। जैसे एक गांधर मृग कृष्णा को देखकर भागता है, इस तरह हम सब भागते हैं इस दुनिया में। और दुनिया स्पर्धा का दुनिया है, आप देख सकते हैं हर एक परिवार में बात होता है हमारे बेटे को कैसे नौकरी में लगाए। हर माँ बाप बात करते हैं, अपने रिश्तेदारों को फोन लगाते हैं कैसे हमारे बच्चों को अच्छी तरह नौकरी में लगाए, कैसे हमारी बेटी को अच्छे से अच्छे परिवार में शादी करवाए। तो हर एक समय लोगों के मन में चिंता रहता है, क्योंकि हमें मालूम है कि इस दुनिया में बहुत स्पर्धा चल रहा है। इतना ही नहीं, जैसे ये दुनिया दुख का दुनिया, हमने बताया ये जो मक्खी होता है उसको मेंढक कहता है, मेंढक को एक सर्प कहता है। इस तरह मनुष्य छोटे मनुष्य को बड़ा मनुष्य कहता है, ये बहुत ही दुनिया का नियम है। तो अगर हम इच्छा करते हैं कि इस तरह के दुखदाई बहुत ही दुनिया में हम ना रहे, हम इसको छोड़कर हम भगवत धाम लौट जाए, उसके लिए अधिकार चाहिए। क्या अधिकार है उसके बारे में प्रभुपाद जी एक संवाद में बताते हैं। तो कुछ एक हफ्ते के पहले मैं पढ़ रहा था, ट्रांसेंडेंटल डायरी नाम की एक किताब है, उसमें वॉल्यूम 2 में एक संवाद है, बहुत महत्वपूर्ण संवाद है, खास करके गृहस्थों के लिए, गृहस्थ भक्तों के लिए, क्योंकि ये संवाद है प्रभुपाद और लोकनाथ स्वामी के बीच में। तो लोकनाथ स्वामी प्रभुपाद को पूछ रहे हैं कि प्रभुपाद, पुरुष और स्त्री दोनों के शरीर में एक ही तरह के पदार्थ हैं, मांस है, हड्डी है, नाखून है और तरह तरह के गंदे पदार्थ हैं दोनों के शरीर में, पुरुष और स्त्री हो, लेकिन क्यों एक दूसरे की ओर आकर्षण होता है, ऐसे मैंने पूछा। तो प्रभुपाद ने बोला कि हम चाहते हैं आकर्षित होने के लिए, इसलिए आकर्षण होता है, ऐसे बोला, क्योंकि हम भगवान के आकर्षण को छोड़कर अगर आए हैं इसलिए हम भौतिक पदार्थों से हम आकर्षित होते हैं। और कहीं और प्रभुपाद ने बताया कि राधा और कृष्ण की जो दिव्य लीला है वो मधुर लीला है और दिव्य लीला है भगवत धाम में, तो भगवान ही विसर्जित होते हैं राधा और कृष्ण के रूप में। लेकिन जब हम भौतिक दुनिया में आते हैं हम सोचते हैं कि मुझे भी भगवान जैसे एक राधा रानी की लीला करना है, और मुझे भी यशोदा मैया और नंदा बाबा चाहिए, इसलिए हमारे लिए माँ बाप दिया गया है, और हर एक व्यक्ति को प्रेमिका चाहिए, ऐसे इस तरह की इच्छा होता है। जिस तरह भगवान की यशोदा मैया और नंदा बाबा है, हम सोचते हैं कि मेरे लिए, मैं कृष्ण जैसा हूँ और मुझे भी एक माँ बाप चाहिए। इसलिए भगवान ने जब हम राधा कृष्ण को छोड़कर आते हैं तो हमारे लिए एक अलग माँ बाप देते हैं भगवान, ठीक है लेके जाओ एक माँ बाप, और हर एक व्यक्ति को प्रेमिका प्रेयसी दिए जाते हैं ऐसे दुनिया में ऐसे। तो उसके बाद लगना से पूछ रहे थे कि कुछ लोग गृहस्थ बनना चाहते हैं, क्या गृहस्थ आश्रम में क्या कोई प्रगति नहीं कर सकते हैं और भगवत धाम नहीं लग सकते हैं, ऐसे पूछा उन्होंने। तो प्रभुपाद ने बोला कि प्रगति कर सकते हैं, आई विल टेल इन इंग्लिश फॉर पर्पस है, या दे कैन मेक सम प्रोग्रेस बट द प्रोग्रेस इज नॉट सॉलिड प्रोग्रेस, ऐसे बोला उन्होंने, वो उतना ज्यादा प्रगति नहीं कर सकते हैं गृहस्थाश्रम, ऐसे बोला प्रभुपाद ने। तो उसके बाद लोकनाथ स्वामी ने वापस पूछा कि प्रभुपाद, लोग बोलते हैं कि हम दोनों साथ में आएंगे भगवान की सेवा करने के लिए और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ऐसे बोला उन्होंने। तो प्रभुपाद ने बोला टुगेदर दे कैन गो टू हेल, ऐसे बोला, दोनों साथ में आकर वो नरक में जाएंगे, ऐसे बोला। जब तक उन्होंने बोला कि उनके अंदर प्रभुपाद सेड टुगेदर दे विल गो टू हेल अनलेस एंड अंटिल वन अवेकन्स द स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट, जब तक कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी भी हो गृहस्थी भी हो जब तक उनके जीवन में विरक्त भावना को उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक वो भगवद्धाम नहीं रह सकते हैं, ऐसे बोला। तो मैंने जब अभी बोला आपको, शायद आपको थोड़ा वो डिस्करेजमेंट प्राप्त हो सकता है आपको, डिस्करेजमेंट निराशा, हाँ निराशा, तो आपको थोड़ा आशा देने के लिए और एक लीला बताता हूँ आपको, आशा देने वाली। तो एक बार प्रभुपाद ने बोला कि अगर कोई पुरुष है जिसकी पत्नी बहुत सुंदर है और वो बहुत नम्र भी है और घर में सब सेवाएं करती है, वो गृहलक्ष्मी जैसी है। आपको मालूम है गृहलक्ष्मी कौन है? गृहलक्ष्मी मतलब है वो घर में रहने वाले अपने पति, अपने बच्चे, अपने ससुर, इन सब लोगों को वो आनंद देती हो, इतना अच्छी तरह उसका आदान प्रदान, उसका रहन सहन का होता है। सुबह जल्दी उठ जाती है, वो नहाती है, वो भगवान की पूजा करती है, पति को उठाती है और उसके कपड़े धोती है और सब तरह के बोले की जरूरत नहीं, आपको मालूम है सबको गृहलक्ष्मी कौन है। तो प्रभु ने बोला ऐसे कोई पत्नी है, एक पति को प्राप्त हो गया है, वो बहुत नम्र भी है, सुंदर भी है, लेकिन अगर पति के हृदय में कृष्ण भावनामृत जीवन में बहुत रुचि है उसको और वो तीव्रता से कृष्ण भावनामृत को अपनाता है, तो ऐसे पति सन्यासी से भी श्रेष्ठ है, प्रभु ने बोला। तो ये किसको बोला? प्रभु ने ब्रह्मचारी को बोला उन्होंने। तो ये ब्रह्मचारी इज वेरी गुड, बट इफ अ हस्बैंड हैज अ वाइफ हु इज ब्यूटिफुल एंड सबमिसिव बट ही इज फिक्स्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड एंथुसियास्टिक, ही इज बेटर देन अ सन्यासी ऑल्सो, ऐसे बोला प्रभु ने। तो इसका मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम हो, इसमें लोगों के जो में क्या चाहिए? अनाशक्ति चाहिए। कि अनाशक्ति क्या चीज है ये मालूम होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें मालूम नहीं अनाशक्ति क्या है तो कभी कभी लोग इसका गलत परिभाषा दे देते हैं। अगर आप अपने ऑफिस में जाकर बोलो लोगों को हमारे संस्था में हम अनाशक्ति सिखाते हैं तो भाग जाएंगे, कोई नहीं आएंगे। लोग सोचेंगे कि अपने पति पत्नी बच्चों को छोड़कर हमें हिमालय में जाना है, लोग सोचेंगे ऐसे। तो ये वैष्णव जीवन में अनाशक्ति के बारे में बहुत अच्छी तरह वर्णन दिया गया है। वैराग्यों के लिए, सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए एक तरह का वैराग्य सिखाया गया है, वो अलग पथ है वो, और गृहस्थों के लिए दूसरे तरह का वैराग्य है। दोनों का समझना आवश्यक है, नहीं तो हम कभी कभी क्या है कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप सुनेंगे ये लीला में, चैतन्य चरितामृत में आप देखते हैं कि सनातन गोस्वामी के जो बहनोई बोलते हैं उसको, बहनोई है ना, उसके बहनोई श्रीकांत ने देखा कि सनातन गोस्वामी महाप्रभु को मिलने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि तुम क्यों जा रहे हो, मेरे साथ ठहरो, ऐसे बोला उन्होंने। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ एक भी दिन नहीं ठहरूंगा, मैं तुरंत जा रहा हूँ, मुझे चैतन्य महाप्रभु को मिलना है मुझे। तो उनकी बहनों ने बोला कि ठीक है, तुम ये ब्लैंकेट जो है बिस्तर है ब्लैंकेट कंबल है, कंबल को लेके जाओ। कंबल को दिया, नया नया कंबल था वो। जब सनातन गोस्वामी गए महाप्रभु के पास तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को स्वागत किया, बात वगैरह किया, लेकिन बार बार वो कंबल को देख रहे थे वो, क्योंकि जो साधु हैं उनको इस तरह के, अगर उदाहरण के लिए ब्रह्मचारी एक चकाचक एक गोल्ड स्ट्रैप वॉच पहना है, सब लोग उसी ओर देखेंगे, क्या है ब्रह्मचारी है लेकिन गोल्ड स्ट्रैप वॉच पहना है, कोई जमींदार जैसे है ना, ऐसे लोग देखेंगे ना, अच्छा नहीं दिखेगा वो। वैरागी को वैरागी जैसे देखना चाहिए। तो महाप्रभु देख रहे थे ऐसे उसके कंबल को, तो सनातन गोस्वामी तुरंत समझ गए, एक भी शब्द भी सुना नहीं उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मुंह से। तुरंत वो गए गंगा के तट में, गए उधर एक भिखारी था, वो कुछ कपड़े धो रहा था, बोला उन्होंने कि तुम ये कंबल ले लो, तुम्हारे टूटा फूटा कपड़े को दो मुझे। तो वो भिखारी ने बोला क्या आप मजाक उड़ा रहे हो मुझे? बोले नहीं नहीं सत्य बात है, तुम ले लो फटा कपड़ा दो मुझे। फटे कपड़े ले लिया उन्होंने, वापिस आ गए। आने के बाद महाप्रभु ने बोला उनको, द लास्ट श्रेड ऑफ मेटेरियल अटैचमेंट यू हैव गिवन अप नाउ एंड कंग्रेचुलेटेड हिम। महाप्रभु ने उनको बधाइयां दी और बोला कि तुम्हारे आसक्ति जो है लास्ट आसक्ति जो था वो भी छोड़ दिया तुमने, बहुत अच्छा है। लेकिन ये किसको बताया गया है? ये सनातन गोस्वामी को बताया गया है जो वैरागी हैं, वैरागी बनते हैं। तो गृहस्थों के लिए क्या वैराग्य है, वैराग्य है वो हमें जानना चाहिए। आप देखते हैं ये वैष्णव सिद्धांत बताते हैं कि अगर ये गृहस्थ के लिए घर अनुकूल नहीं है भक्ति करने के लिए तो उसको संन्यास लेकर चले जाना चाहिए। जैसे स्वरूप दामोदर अपने घर को छोड़कर वो संन्यास लेकर महाप्रभु के साथ चले गए। वो दूसरी ओर से देखा जाए तो श्रीवास ठाकुर वो अपने घर में ही रहे अपने पत्नी के साथ श्रीवास आंगन में। क्यों उन्होंने घर नहीं छोड़ा, क्यों संन्यास नहीं लिया? क्योंकि घर में परिस्थिति अनुकूल था भक्ति करने के लिए, इसलिए वो घर छोड़े नहीं। तो ऐसे एक दिन की बात है कि चेतन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अपने सब सारे पार्षदों के साथ वो सेवा संगन में बहुत आनंद के साथ वो कीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे मृदंगम हरि बोल, हरे 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 राम हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, मतलब कीर्तन चल रहा था तभी कुछ रोने का आवाज सुनाई दिया पीछे से। तो तुरंत श्रीवास ठाकुर अंदर चले गए और देखा कि उनका उनके जो बेटे थे मर गए थे, छोटा बच्चा था लड़का। तो सब घर के जो स्त्रियां सब बैठ कर वो फूट फूट कर रो रही थी और वो जोर से वो रोने लगी। तो श्रीवास ठाकुर ने सुना तो तुरंत उनको शांत किया। उन्होंने बोला कि चुप, कोई भी आवाज नहीं करना चाहिए, अगर आप लोगों को रोना है तो घर के बाहर चले जाओ, जब कोई बैठकर रोना नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला कि चेतन महाप्रभु इतना कीर्तन के रास में पूर्ण तरीके से आनंद में आनंद लूट रहे हैं, उनके कीर्तन रस में आनंद में बाधा नहीं आना चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला, उन्होंने एक भी बात नहीं बोला कि मेरे बेटे को क्या हो गया, कैसे मर गया, वो रोए नहीं हुआ। इस तरह उनको सिर्फ शांत कराकर तुरंत वापस आ गए और आकर वापस नाच रहे थे कीर्तन में। तो केंद्र आप शुरू हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे मानस चैतन्य महाप्रभु ने रोक दिया कीर्तन को और बोला उन्होंने कि मुझे कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, मुझे आज पता नहीं कारण क्या है। तो इतने में किसी भक्त ने बोला महाप्रभु को, महाप्रभु शिवास ठाकुर के अच्छा बच्चे मर गया हो, ऐसे मर गया, कब मर गया हो? बोले कि 7 घंटे पहले। अरे 7 घंटे पहले किसी ने बोला नहीं मुझे, और शिवास भी नाच रहा है कीर्तन में मेरे साथ। तो तुरंत महाप्रभु पीछे गए और आधी हिसाब से जोर से रोने लगी महाप्रभु को देखकर, और महाप्रभु ने बच्चे को देखा और तुरंत उन्होंने बच्चे को बोला कि बच्चे को उठने के लिए बोला महाप्रभु ने। तो आपने चित्र के तो कहने में कथा में आपने सुना होगा कैसे नारद मुनि और अंगिर मुनि आए तो नारद मुनि ने बच्चे को उठाया है ना, ऐसे महाप्रभु ने बुलाया बच्चे को वापस, तो बच्चा उठ गया, वो बैठ गया अपनी जगह में और बोला दोनों हाथ को क्या बोलते हैं अंजलि मुद्रा में, उन्होंने क्या बोला, हे महाप्रभु आप तो परम भगवान हैं और आपने ही मुझे दूसरे गति में भेजा, इसलिए मैं जा रहा था और आपने बुलाया मुझे, इसलिए मैं वापस आ गया अभी, तो आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किधर जाना है, अगले गति में मुझे जाना है, आप मुझे अनुमति दो। इस तरह बोलकर वो बच्चा अपने शरीर छोड़कर वापस लेट गया। तो सब लोग उसको देखकर बहुत आनंदित हो गए क्योंकि उनको एक बार बच्चे को बोलते हुए सुनने को मिला वापस इस तरह। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला शिवा सागर को, हे शिवा तुम मुझे इतना प्रेम करते हो, इतना प्रेम करते हो, तुम्हारे प्रेम का सीमा ही नहीं है, तुम घर में इतना बड़ा अपघात हुआ है लेकिन तुम उसका परवाह न करते हुए मेरे साथ कीर्तन में गाते नाचते हो तुम, तुमको छोड़कर मैं कैसे में जा सकता हूँ, ऐसे महाप्रभु ने बोला। ये बहुत मर्म की बात है, महाप्रभु क्या उनको इंकित कर रहे थे कि कुछ समय के बाद ही जल्दी मैं संन्यास लेने वाला हूँ और संन्यास जब दूंगा मैं घुंघराले बाल उसको मैं शेविंग कर दूंगा और सन्यासी का वस्त्र धारण करके मैं चले जाऊंगा जगन्नाथपुरी में, तुमको छोड़कर मैं अकेले कैसे रहूंगा, इस तरह की बात वो बता रहे थे, इनडायरेक्टली बता रहे थे महाप्रभु उनको। और उन्होंने बोला शिवा ठाकुर और मालिनी दोनों को उन्होंने बोला कि पास में इंसान प्रूव करे थे, तो महाप्रभु इंसान प्रूव साथ में बोले उनको कि हम दोनों आपके बच्चे बन जाएंगे आज से, आप चिंता मत करो हमेशा के लिए हम आपके बच्चे रहेंगे, ऐसे उन्होंने बोला। तो ये शिवा ठाकुर की वैराग्य जो है, ये अनाशक्ति जो है, हालांकि वो परिवार में रहते हैं लेकिन उनकी दृढ़ विश्वास जो है भगवान के ऊपर इसको कोई नकल नहीं कर सकता है उसका। मैंने सुना कि बम्बई के ये जो राजनाथ महाराज जी एक किताब लिख रहे हैं अभी, उनके पहले किताब एक ऑटोबायोग्राफी था, दूसरा किताब लिख रहे हैं क्योंकि एक बहुत फेमस पब्लिशर है अमेरिका में, उन्हें नाम ना बोलने के लिए बोला मुझे, इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, तो बहुत बड़ा पब्लिशर है जैसे मैग्रा हिल मैकमिलन वो सीरीज में उस लेवल के एक पब्लिशर है, उन्होंने बोला कि उनको एक अमेरिकी आदमी जो भारतीय संस्कृति को अपनाया है और बहुत सालों से उसको प्रैक्टिस किया है और प्रैक्टिस करके उसको अनुभूति मिला है, वो अनुभव मिला है भक्ति में, ऐसे आदमी को ढूंढ रहे थे, ऐसे ढूंढते ढूंढते वो आ गए महाराज के पास।
तब उनको पता चला कि ये तीसरा से प्रैक्टिस करें वगैरह,
तो उन्होंने उनको एक किताब लिखने के लिए बोला जिसके ऊपर भक्ति भक्ति के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बोला कि ज्ञानी और योगी लोगों ने अनेक किताब लिखा है और हमें अमेरिकी लोग आजकल थक गए हैं, इसलिए आप ऐसे ही किताब लिखो ये भक्तिमय जीवन के बारे में, अगर आपका अच्छा होता तो हम उसको पब्लिश करेंगे, ऐसे उन्होंने बोला। तो महाराज भी लिख रहे हैं, मैं जब गया था अमेरिका मुझे देखने को मिला, उन्होंने उस किताब में एक कथा लिखा है, ये रियल स्टोरी। मुंबई के एक परिवार है, एक माता जी उनका नाम है राधा रानी माता जी, मुरलीधर प्रभु और राधा रानी माता जी नाम के एक परिवार है मुंबई में। तो उनके तीन बेटियां हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं उनके। तो क्या हुआ, उनके लास्ट बेटी जो है जब बच्चा का जन्म हुआ तभी डॉक्टर ने बोला कि इसको कुछ बहुत बड़ा गौर व्याधि है, कुछ ट्यूमर जैसा है, कैंसर कैंसर जैसा है वो आ गया। तो वो और उनके पति बार बार वो अस्पताल में जाते थे और घंटों घंटे समय बिताना पड़ा, बहुत पैसा भी खर्चा करना पड़ा, लेकिन ये दोनों पति पत्नी रोज सुबह सुबह नियमित रूप से माला भी कर लेते थे पूरा है? और अस्पताल में जाओ बच्चे के लिए बैठे थे तो कृष्ण की किताब पढ़ते थे है? और वो उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला कि भगवान ऐसे कैसे कर दिया हमको, हम दोनों दीक्षित भक्त हैं और हमको ऐसे बच्चे दिया है जो व्याधिग्रस्त बच्चा है और उसके लिए इतना पैसा भी खर्चा करना पड़ता है। ये लगभग 3-4 साल तक बच्चे की व्याधि जो है इस तरह बढ़ता गया, बहुत समस्या हुआ और डॉक्टर ने बोला कि शायद बच्चा जिएगा नहीं, मरने की संभावना है, ऐसे उन्होंने बोला था। तो वो परिवार को और एक प्रभु जी है मुंबई में जो आकर उनको शांतावन दिया, उन्होंने बोला कि आप लोग चिंता मत करो क्योंकि कौन कौन व्यक्ति किस कर्म के साथ प्रारब्ध कर्म के साथ आता है पता नहीं हमें इस दुनिया में है, इसलिए आप लोग चिंता मत करो। लेकिन ये लोगों को कुछ भी चिंता नहीं था थोड़ा भी, तो ये लोगों ने उस आदमी को बोला कि भगवान ने बच्चा दिया है हमें, अगर भगवान लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम कौन है उनको रोकने के लिए, अगर भगवान इस बच्चे को बचाना चाहते हैं तो हम पूर्ण कोशिश करेंगे इसको बचाने के लिए जरूर हमारी ओर से। तो और उन्होंने इस तरीके से बहुत सहनशीलता के साथ वो बच्चे को अस्पताल में लेके जाना, और उनका पहले से दो बच्चियां थे छोटे बच्चे हैं, वो तीसरा बच्चे का है उसको संभालना। इसे लगभग 4 साल के बाद वो डॉक्टर लोग जो ऑपरेशन वगैरह किया पूर्ण तरीके से वो ठीक हो गया वो बच्चे का। तो आजकल भी वो छोटी बच्ची मंदिर में आती है उधर बम्बे के मंदिर में। तो महाराज जी बता रहे थे कि खास करके महाराज जी उस किताब में ये लिखा है ये कथा को, हमारे जीवन में हमारे हृदय में कितना भक्ति है वो पता चलेगा जब हम तकलीफ के बीच में है, तकलीफों के बीच में तभी पता चलेगा हमें हम भक्ति में कितना गंभीर है, क्योंकि जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तभी सोलह माला करना मंदिर में आना उतना कठिन नहीं है, कठिन बात नहीं है, लेकिन जब तकलीफ आता है क्या हम भगवान का आश्रय लेते हैं, क्या भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं और क्या हम भगवान को छोड़ देते हैं, आप जो करना चाहते हो आप करो, क्या हम छोड़ सकते हैं, ये प्रश्न है हमारे जीवन में। हालांकि भगवान ने बच्चे को बचा दिया तो वो माता पिता तैयार थे, जो भी होना है जो होगा वो भगवान की मर्जी भगवान की इच्छा से होगा, हम तैयार हैं उसके लिए, पूर्ण विश्वास था उनको। एक भी शब्द निकला नहीं उनके मुंह से भगवान को गाली देते हुए, नहीं तो दूसरों को गाली देते हुए, डॉक्टर को गाली देते हुए, नहीं तो रोते हुए, किसी ने देखा नहीं उनको। अनेक कांग्रेगेशन लोग बता रहे हैं कि जो लोग अस्पताल में गए उनको शांतावना देने के लिए वो लोगों को एक अच्छा क्लास मिल गया सुनने को, अच्छा क्लास सुनकर वो लोग चले गए और वो लोग वापिस आकर बोले कि हमको उनका संग प्राप्त हो गया, हम अस्पताल में गए उनको संग देने के लिए क्या हो गया हमको संग प्राप्त हुआ, ऐसे बता रहे थे। तो ये वैराग्य है, असली वैराग्य वैष्णव जीवन में ऐसा वैराग्य है। और वैराग्य का और भी मतलब है, जैसे वैष्णव का डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? ये गिरगिट मालूम आपको? गिरगिट, गिरगिट जो होता है पेड़ में वो ब्राउन कलर का होता है, जब वो घास के बीच में आ जाता है वो हरा भरा बन जाता है, अपने कलर को बदलता है, रंग को देखा आपने, रंग को बदलता है, गिरगिट बोलते हैं उसको, करेक्ट है? करेक्ट, बदलता है, रंग बदलने वाला एक जानवर है वो। इस तरह वैष्णव को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंदिर में हम आते हैं, हम ज्योति कुर्ता पहनते हैं, हम साड़ी पहनते हैं, तिलक पहनते हैं, आनंद से गाते हैं, नाचते हैं, लेकिन जब हम घर चले जाते हैं, हम टेलीविजन देखते हैं, हम तरह तरह के इंग्लिश नावल को पढ़ते हैं, ऐसा नहीं लोग करते। मैंने सुना, जब मैंने सुना मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि प्रभुपाद जी भागवत के पहले स्कंध में लिखते हैं कि जो कर्मी लोग लिखते हैं नावल वगैरह लिखते हैं, ये नावल जो है किसके समय में, जो कौवा जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, डस्टबिन मतलब आपको कचरा का पेटी जो है ना, उधर से कभी कभी एक चूहा को निकालकर उसको फाड़ कर उससे रस निकालता है पीने के लिए। ये भौतिक नावल जो है वो इसके समान है, भक्तों के लिए नहीं है भौतिक नावल। क्योंकि मैंने सुना कि अनेक लोग हैं वो नावल वगैरह खरीद कर पढ़ते हैं, तो हमें भागवतम चैतन्य चरितामृत भगवत गीता इसको पढ़ने के लिए समय नहीं है। हम लोगों को नावल पढ़ने के लिए कैसे टाइम मिलता है भगवान को पता, जीवन कितना व्यस्त रहते हैं हम लोग, बिजी रहते हैं। तो वैराग्य का मतलब है हम कृष्ण भावनामृत संघ में दिए हुए विधि विधानों को, खास करके प्रभुपाद जी जैसे आचार्य जो हैं उनके दिए हुए विधि विधानों को बहुत गंभीरता से पालन करना चाहिए। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, हम कपड़े किस लिए पहनते हैं? शरीर को ढकने के लिए पहनते हैं, स्त्री पुरुष को नहीं तो पुरुष स्त्री को आकर्षित करने के लिए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, हमें सरल कपड़े पहनना चाहिए। क्योंकि अगर हम मंदिर में आते हैं, मंदिर में ही नहीं, मंदिर में भी हो बाहर भी हो, जब हम जाते हैं दूसरे लोगों के मन को उत्तेजित करने वाले तरीके से कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। मैंने सुना कुछ लोग ऐसे कपड़े पहनकर दूसरों के मन को उत्तेजित करने में उनको मजा आता है उनको, लेकिन जब दूसरे व्यक्ति उनको तकलीफ देने के आता है तभी ये लोग रोएंगे, ये गलत है। तो खास करके जो वैष्णव बन गए हैं, तिलक पहनते हैं, कंठी माला पहनते हैं, उनको ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जिसको देखने से दूसरों को भगवान का स्मरण आए। ऐसे एक बार मैंने कुछ भक्तों को मैंने देखा ऐसे चकाचक कपड़े पहने थे, ऐसे ऐशरम कपड़े पहने थे, तो मैंने पूछा, वो बोले कि क्या हम क्या करें, ये ऑब्लिगेशन है, हम लोग गृहस्थी हैं, हम बाहर जाते हैं, इस तरह पहनना होता है, पहनना पड़ता है, बोल रहे थे। एक्चुअली ये ऑब्लिगेशन वगैरह जो है ये हम लोग क्या करते हैं, हम खुद बनाते हैं ऑब्लिगेशन, हमारा ऑब्लिगेशन सिर्फ भगवान को है। क्योंकि आप अगर सरल कपड़े पहनोगे ऐसा नहीं कि आपको आपके ऑफिस से आपको भगा देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आप शादी में भी जाते हो, अगर आप सरल कपड़े पहने हो, अगर आप में से पुरुष कोई धोती कुर्ता पहनकर शादी में जाते हैं, माता जी साड़ी में जाते हैं, कोई आपको भगाने वाले नहीं है उधर से, ये जान जाएंगे कि ये सरल भक्त हैं बस, और ये सीरियस भक्त हैं, और आपको देखकर वो भी सीरियस बन जाएंगे आपको देखकर। इसके बदले में हम क्या करते हैं, हम ऐसे चकाचक सिनेमा एक्टर जैसे एक्ट्रेस जैसे हम कपड़े पहनकर हम जाते हैं, बोलते हैं कि हम ऑब्लिगेशन को हमें पूर्ति करना पड़ेगा। तो कभी कभी कर्मी लोग हमसे वो सरल बनते हैं और हमको देखकर वो भी चकाचक बनते हैं, समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? मुझे बोलना नहीं आता हिंदी में उतना सही ढंग से, कितने लोग समझिए मैं जो बोल रहा हूँ, सब समझिए ठीक है। तो वैराग्य का मतलब क्या है, तो कुछ लोग, तो मैं अमेरिका गया था अभी, अमेरिका में ह्यूस्टन में एक भक्त है अद्वैत चंद्र प्रभु, उनके घर में हम गए थे। एक्चुअली ये लड़का बम्बई में पढ़ता था एसपी कॉलेज में पहले, तो पहले मैंने उसको मिला था, इसलिए बहुत प्रेम करता है वो, तो इसने अद्वैत चंद्र प्रभु, तो ह्यूस्टन में जाकर लगभग 8 साल हो रहे हैं उनके बंगले में गए थे तो देखा कि फ्रंट हॉल में जाते ही उनका फ्रंट हॉल जो है जैसे हमारे मंदिर के हॉल के समान है उतना बड़ा है वो उनका फ्रंट हॉल। उधर पंचतत्व का बहुत बड़ा आल्टर बनाया है, बहुत बहुत बड़ा आल्टर है, मृदंग करता सब कुछ रखा है और लाइब्रेरी बनाया है लोगों के लिए। उनके घर के किसी भी दीवार में देखो उधर राजनाथ महाराज और जयप्रदा महाराज का फोटो है, क्योंकि उनके पत्नी जो है वो जयप्रदा स्वामी के डिसिपल हैं, मायापुर से हैं। तो इतने जयप्रदा स्वामी राजनाथ स्वामी और अनेक वैष्णव का फोटो, जयनिवास प्रभु, पंगलांगरी प्रभु और ऐसे प्रभुपाद और अनेक भक्तों के साथ फोटो जो वृंदावन में पापा ने लिया था वो फोटो, चारों दिशा में कहीं नहीं देखो, घर में पूरा घर में इतना लगा है, ऐसा फोटो लगाया है। तो मुझे एक कमरे में हम ठहरे थे उधर ऊपर, उधर भी इतना है। तो मैंने पूछा था उनको, शाम को हमने एक कार्यक्रम किया और दूसरे दिन भागवत का कार्यक्रम और उस दिन शाम को तीन कार्यक्रम किया था। तो दूसरे दिन सुबह मैंने पूछा था उनको कितने बजे, मैंने बोला मैं थोड़ा जल्दी उठता हूँ, क्या मैं जल्दी उठ के जब कर सकता हूँ आपके आल्टर के सामने, आपको प्रॉब्लम नहीं है। वो बोला कि कितने बजे आप उठते हैं, मैंने बोला कि हम उठकर 4:30 बजे मैं शुरू करता हूँ। बोले बोले हमारा भी ऐसा ही है, बोला उन्होंने। तो 4:30 बजे उठकर उनकी पत्नी जो है वो आरती करती है और पति मृदंग बजाकर वो कीर्तन करते हैं और हम मंगला आरती में हमने भी ज्वाइन किया, मंगला आरती करते हैं, नरसिंह आरती, तुलसी आरती और यह करने के बाद पति पत्नी दोनों जब कर चुके। तो मैंने पूछा कि आपको कुकिंग वगैरह नहीं करना है क्या, आप बैठकर शांति से जब कर रहे हैं इस तरह? तो उन्होंने बोला कि वो मफिन वाले को मफिन बनाते हैं, ब्रेड ये सैंडविच वगैरह बनाते हैं, इसे पहले से बनाकर रख देते हैं। तो सुबह हम तो बहुत लाइट ब्रेकफास्ट लेते हैं बस, तो हमारा कुकिंग शुरू होता है 10 बजे के बाद, बोला उन्होंने। और वो पति आ जाते हैं 1 बजे खाने के लिए। तो सुबह का कार्यक्रम एकदम शांति से होता है उनको, 8:30 बजे तक भागवत भी पढ़ते हैं और उसके बाद वो ऑफिस जाते हैं और 1 बजे आते हैं, लंच लेते हैं, इस तरह उनका चलता है जीवन। तो मैंने पूछा, 2 दिन सुबह मैंने देखा इस तरह के कार्यक्रम, तो मैंने उनको पूछा कि क्या आप ये सब कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि मैं आया हूँ आपके घर में इसलिए। कहा तो रोज होता है। तो वो बोले रोज होता है हमारे घर में, ये तो हमारे रोज की दिनचर्या है, ऐसे बोले वो। तो कभी कभी गृहस्थ भक्तों को ऐसे आइडिया है उनका कि ये मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा, जैसे भागवत क्लास और जप करना सुबह उठकर जल्दी उठकर, ये ब्रह्मचर्यों के लिए है, इस तरह अनेक लोग सोचते हैं, ये गृहस्थियों के लिए लागू नहीं है, इस तरह अनेक लोगों का सोचना है, लेकिन ये गलत से नहीं है, ये गलत धारणा है। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि इस्कॉन संस्था में जुड़ने वाले कोई भी भक्त हो, गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, उनको जल्दी उठना चाहिए सुबह, इसके लिए रात को भी जल्दी सोना पड़ेगा आपको, आपको जल्दी जैसे 10:30-11 बजे के पहले सोना चाहिए। अगर ब्रह्मचारी लोग 4:30 बजे कार्यक्रम करते हैं तो आपको कम से कम 5-5:30 बजे से आपका कार्यक्रम शुरू होना चाहिए घर में। तो कुछ लोग होते हैं हम 7 बजे उठ सकते हैं, 8 बजे उठ सकते हैं, तो इस तरह उठने से क्या होता है, हमारे भक्तिमय जीवन में तेज नहीं है, तीव्रता नहीं है, सीरियसनेस नहीं है, द फायर स्पिरिट विल नॉट बी देयर। डेला डाला भक्ति का गाड़ी चलता रहता है, डेला डाला हम भी करते हैं, माला करते हैं, कुछ ना कुछ करके शाम को रात को पूरा कर देते हैं माला, ऐसे कुछ लोग करते हैं ऐसे। तो मैं अमेरिका में कहीं भी गया, रिक्वेस्ट में मैंने बोला आपको, इसी तरह सैन होजे उधर गया था, एक प्रभु जी है, एक जयप्रदा स्वामी के डिसिपल है, मदन मोहन प्रभु नाम के, लंदन में मिला उनको। वो सुबह बोले कि वो जब वो और उनकी वाइफ वो कुकिंग करते हैं, कुकिंग करते समय वो प्रसाद की कैसेट सुनते हैं और प्रसाद करते समय दूसरा लेक्चर सुन लेते हैं और वो अपनी गाड़ी में कंपनी जाते समय तीसरा लेक्चर सुन लेते हैं, दिन में 3 प्रसाद लेक्चर सुनते हैं वो सुबह। और शाम को उन्होंने बोला कि उनको 7 दिन में 6 दिन का कार्यक्रम है उनका, शाम को हर दिन शाम को उन्होंने अलग अलग नाम बताया, इस दिन शाम को उधर जाता हूँ उधर जाता हूँ। तो मुझे लेके गए थे ओसहो स्ट्रीट में, उनके घर में लेके, उनके घर का कार्यक्रम था, 80 लोग आए थे कार्यक्रम में, पूरा पैक था। तो मैंने पूछा कि उनको, अरे हमारे ब्रह्मचारी भी इतना कार्यक्रम नहीं करता, कैसे कर पाते हो? तो वो बोला कि प्रभु जी इसमें यही हमारा जीवन है,
तो ऐसे अनेक कांग्रीगेशन को मुझे देखने को मिला। सारे अमेरिका में मैं दो ही मंदिर देखा जिधर बहुत मात्रा में ब्रह्मचारी हैं। एक है न्यूयॉर्क का मंदिर, दूसरा है लॉस एंजलिस का मंदिर। बस ये मंदिर में लगभग 15-20 ब्रह्मचारी हैं। और बाकी मंदिरों में जिधर गया मैं, वो सब मंदिरों को चलाने वाले गृहस्थी भक्त ही हैं, वो ही चलाते हैं पूरा। तो ऐसे सुबह आप देखेंगे माता जी यहाँ मंगल आरती करती हैं, माता जी पुजारी हैं, तीन चार माता जी हैं जो पुजारी की सेवा करती हैं और भगवान की ड्रेसिंग करती हैं, वो ही करते हैं रोज, उनका टर्न होता है उनका, अलग अलग दिन अलग अलग माता जी आकर करते हैं ऐसे। और वो माता जी के पति जो है एक दो लोग, वो लोग मंगल आरती करते हैं। कुछ मंदिरों में लगभग 30-40 कांग्रेगेशन पुरुष लोग होते हैं। जब मैं गया था कुछ कुछ मंदिरों में, मैं और गौरंग प्रभु, कभी कभी मैं और गोविंद प्रभु साथ में जाते थे, हम ही दो ही ब्रह्मचारी थे, बाकी सब कांग्रेगेशन ही थे। तो हमने उनको पूछा आपके आश्रम में कितने लोग हैं, तो किस आश्रम के बारे में पूछ रहे हैं, पूछा उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम हमारे मंदिर मुंशी आश्रम ही नहीं है, बोला उन्होंने। हम सब हम लोग ही चलाते हैं, दिन में हम ऑफिस में जाते हैं और सुबह शाम हम मंदिर में। अब शाम को बड़ा भीड़ है, सब कांग्रेस लोग आ जाते हैं, गौर आरती करते हैं मंदिर में आकर, गौर आरती, उसके बाद भगवती का क्लास होता है, हर दिन शाम को इतना बड़ा भीड़ है उधर। तो उन्होंने बोला कि अगर ब्रह्मचारी कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी रह सकते हैं हमारे मंदिर में, नो प्रॉब्लम, ऐसे बोला उन्होंने। उसका मतलब हम चलाते हैं मंदिर, ब्रह्मचारी भी रहते हैं कभी कभी, एक दो ब्रह्मचारी आकर रहते हैं, जैसे साइनोज मंदिर में एक ब्रह्मचारी है ऐसे। तो इस तरह अमेरिका के सब सारे कांग्रीगेशन जो है हफ्ते में सुबह शाम, शायद हर दिन आते नहीं होंगे शाम को, अगर उनके कांग्रीगेशन में अगर 200 लोग हैं तो हर दिन शाम को टर्न लेकर आते हैं, 40-40 लोग आते हैं ऐसे, शायद हफ्ते के दो दिन तीन दिन शाम को आते हैं ऐसे, सुबह भी ऐसे टर्न लेकर मंगल आरती वगैरह करना और पूरा चलाते हैं मंदिर को। मैं देखा कि उनका जिम्मेदारी इतना लेते हैं, बहुत आश्चर्य हुआ मुझे। और ये वीकेंड में क्या करते हैं, शनिवार रविवार को सारे अमेरिका के मंदिरों में बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, शनिवार शाम को हरिनाम और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कभी कभी रविवार शाम को भी होता है, दोनों दिन। कुछ कांग्रीगेशन शनिवार को आते हैं, कुछ कांग्रीगेशन रविवार को आते हैं, और वो हरिनाम में जाते हैं, 3-4 किलोमीटर जाते हैं। और लंदन के मंदिर में माता जियों का एक हरिनाम का ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है उनका, 100-200 लोग हैं, 100-150 लोग हैं, तो वो लोगों का माता जी हरिनाम होता है अलग उनका, सब माताओं का। और कभी कभी माता जी का प्रयोजन का साथ में भी होता है, कभी कभी विद्यार्थियों का होता है। तो मैंने सोचा था कि अमेरिका लंदन में शायद इतना प्रचार नहीं चल रहा है, मैंने सोचा था, किसी ने बोला मुझे, मैं जाकर देखा, बहुत आश्चर्य हुआ। हालांकि ब्रह्मचारी ये लोग ज्यादा नहीं है उधर, लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं वो बहुत तीव्र से प्रैक्टिस करते हैं। तो लेकिन उनका एक सुविधा उनका क्या है, उनका नौकर है, सुबह 9-9:30 बजे वो निकलते हैं अपने घर से और शाम को 5 बजे आ जाते हैं घर, वापिस लौट जाते हैं 5-5:30 बजे। लेकिन भारत में कितने बजे लौट आते हैं लोग, 8 बजे आते हैं, 8-9 बजे आते हैं। तो मैंने पूछा, वो बोल रहे हैं कि ऑफिस में उनको ज्यादा नौकरी में टाइम ज्यादा नहीं लगता उनको, सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं वो लोग, इसलिए वो शाम को दे सकते हैं टाइम, दे सकते हैं बहुत। और माताएं जो है उनके घर में एक भी नौकरानी नहीं है। उन्होंने बोला कि नौकरानी कौन रखते हैं, करोड़पतियों से करोड़पति ऐसे ही लोग रखते हैं। अगर आप 1,000 परिवार में जाएंगे, 1 परिवार में लोग रखते हैं नौकर चाकर ऐसे। तो माताएं घर की जो सुबह कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, धोना, इसलिए उनका वॉशिंग मशीन होता है, और घर को सफाई करना, सब कुछ डस्टबिन में डालकर वो घर के सामने रख देते हैं और एक गाड़ी आकर लेके जाता है उसको, पूरा काम घर में वही करते हैं, सब काम पति और पत्नी वही करते हैं। तो मैंने सोचा कि अरे भारत में तो हर एक घर में 2-2, 3-3 नौकर रखते हैं, ऐसे मैंने सोचा उनको आसानी से होना चाहिए उनका काम। अगर आपके घर में 2 नौकर हैं तो आपको सुबह का टाइम फ्री मिलना चाहिए आपको अपने भक्ति करने के लिए, ऐसे सोचा हमने। शायद आप बुरा मत मानिए मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि भारतवासी कभी कभी भक्ति जो हमें प्राप्त हुआ है उसको बहुत सस्ते लेते हैं। मैंने देखा कि अमेरिकी लोग जो हैं तो भक्ति को बहुत गंभीरता से लेते हैं, प्रभु जी हो, माता जी हो, कोई भी हो। खास करके आपको लंदन मंदिर में जाकर देखना चाहिए। उधर एक दिन सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया, मैं 3 बजे उठ गया और 3:30 बजे रेडी होकर 3:30 से 4:30 में जब करने के लिए मंदिर में गया। देखा पूरा माताएं माताएं हैं उधर, लगभग 8-10 माताएं चल चल कर जब कर रही थी। मैं वापस चले गया अपने रूम में, एक भी ब्रह्मचारी नहीं था। उनके मंदिर में लगभग 14 ब्रह्मचारी हैं लंदन मंदिर में, लेकिन माता जी यहाँ ब्रह्मचारी से भी स्ट्रांग है उधर बहुत। मैं सिर्फ प्रभात जी को नमस्कार करके वापस चला गया रूम में जब करने के लिए। ऐसे तो ये एक चीज हम देखते हैं कि वो लोग, उनको भक्ति क्या चीज है मालूम नहीं है, लेकिन अगर मालूम हो जाता है तो एकदम जोर से पकड़ते हैं उसको, छोड़ते नहीं है। वो लोग बहुत गंभीरता से पकड़ते हैं। तो हम अनेक मंदिर में गए थे और इतना तरह तरह के उत्सव मनाते हैं लोग, बोट फेस्टिवल मनाते हैं, रथ यात्रा मनाते हैं, हर हफ्ता कुछ फेस्टिवल होता है उनका, अलग अलग फेस्टिवल, जैसे हम लोग मनाते हैं इधर उधर भी। अभी ह्यूस्टन मंदिर पहला का मंदिर जो था वो हमारे मंदिर के हाल जैसे था। अभी जो नया मंदिर बनाया है ये हाल से भी बड़ा है, वो ये हाल का लगभग दुगुना है इस मंदिर का हाल, उतने लोग आते हैं उधर। अभी लंदन के मंदिर में जन्माष्टमी के लिए 80,000 लोग आते हैं उधर, 80,000 पीपल समझा लंदन मंदिर में। तो मैं आज के प्रसंग में दूसरे पार्ट में मैं बता रहा था आपको स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट। ग्रस्तों के लिए स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट का मतलब क्या है, आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने बोला गृहस्थियों को, अगर आप वानप्रस्थ भी लेना चाहते हो, आपको पत्नी बच्चे को छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप पत्नी के साथ भी मंदिर में आकर आप सेवा कर सकते हैं। जब हम लंदन में थे, लंदन में भी और ह्यूस्टन में भी, हम लोग स्वामीनारायण मंदिर में गए। आपको मालूम है ये स्वामीनारायण के लोग कौन है, ये लोग भी विशिष्टाद्वैतम नाम के जो रामानुज संप्रदाय जो है उसको अपनाते हैं, ये भी रामानंदी बोलते हैं उसको, वो संप्रदाय में आते हैं ये लोग। और ये लोग मानते हैं कि भगवान का आकार है, भगवान निराकार नहीं है, और भगवान के दाम है, भगवान की सेवा है, ये सब मानते हैं ये लोग। सिर्फ इनके संप्रदाय में जो नीलकंठ सहजानंद जो बोलते हैं, जो एक गुरु है, उस गुरु को भगवान जैसे मानकर उनको पूजा करते हैं, क्योंकि गुरु की पूजा का ज्यादा महत्वता दिया जाता है इनकी संस्था में। तो हम गए थे, किस लिए गए थे हम लोग, उनके मैनेजमेंट को देखने के लिए, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कैसे ट्रेनिंग वगैरह देते हैं लोगों को, कैसे संभालते हैं, उनका एकदम परफेक्ट मैनेजमेंट है। तभी हमें पता चला कि उनके सारे दुनिया में उनके 350 केंद्र हैं और उनके वॉलंटियर्स हैं, हाउ मच है, 35,000 वॉलंटियर्स हैं। तो मैंने पूछा उनका वॉलंटियर का मतलब क्या है, तो क्योंकि मंदिर में मैंने देखा कुछ लड़के थे जो तिलक पहने थे और पैंट शर्ट पहने थे, उन्होंने बोला हम वॉलंटियर है, वॉलंटियर का मतलब क्या है, क्या आप लोग घर की नौकरी वगैरह नहीं करते हैं, आप लोग क्या छोड़कर आ गए। तो उन्होंने बोला कि वॉलंटियर का मतलब है 50 उम्र के पहले जो लोग 5 साल देते हैं भगवान की सेवा के लिए वो वॉलंटियर हैं। 50 उम्र के पहले कितना देते हैं, 5 साल अपने जीवन की 5 साल देते हैं, ये वॉलंटियर हैं। तो क्या करते हैं, उदाहरण के लिए अगर हमारे किचन डिपार्टमेंट है अभी, अगर आप में से कोई बोलते हैं कि हम 3 साल देते हैं किचन डिपार्टमेंट चलाने के लिए अपने जीवन में, तो 3 साल आकर आप किचन डिपार्टमेंट को चलाएंगे और आप जाते समय और एक व्यक्ति को लेकर आकर ट्रेनिंग दे देंगे और तो 3-4 साल वो चलाएगा। उन्होंने बोला कि कम से कम 2 साल देना चाहिए साथ में, एक एक साल नहीं रहते हैं वो, 2 years अटेस्टेड दे हैव टू गिव। 2 साल आकर स्वामीनारायण मंदिर में रहकर जिस मंदिर में उनको डालते हैं सेवा के लिए वो रहते हैं उस मंदिर में, 2 साल सेवा करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, घर चले जाते हैं, नौकरी करते हैं और 10 साल के बाद वापस जाकर और 3 साल देते हैं, कुल मिलाकर 5 साल ऐसे। तो ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कभी कभी हम लोगों को बोलते हैं कि हमारे मंदिर में वरिष्ठ वैष्णव सभा में लगभग 80 लोग हैं, तो अगर ये 80 लोग 90 लोग मंदिर में आकर सेवा करेंगे, नया मंदिर आने वाला है, बहुत सेवाएं भी होगा। और आपको मैंने बताया था आप लोग मंदिर में आकर जब टाइम मिलता है आप सेवा करो चले जाओ, लेकिन क्या होता है अनेक लोग उनकी जिम्मेदारियां कभी खत्म होते नहीं है। ये 70 साल होने के बाद भी जिम्मेदारी खत्म नहीं होते हैं। फिर बोलते हैं हमारे मामा ने बुलाया, इन्होंने बुलाया, अलग अलग रिश्तेदार बुलाते हैं, ये शादी के लिए बुलाया, हमारे पोते की शादी है, पोते के बेटे की शादी है, ऐसे अलग अलग ये शादी है, बर्थडे है, मैरिज डे है, ये डे, तो लगातार सेवा नहीं कर पाते हैं। ऐसे हमने देखा है ऐसे जो वानप्रस्थ के रूप में हमारे बड़ा हरिदास प्रभु बैठे हैं उधर, वो सेवा करते हैं, वो बहुत दुर्लभ है ऐसे वानप्रस्थ जो लगातार सेवा करने वाले हैं। तो ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने सुना होगा ये कैलाश का स्टोरी सुना आपने कितने लोगों को मालूम कैलाश का कहानी, सबको मालूम है। ये कैलाश के कहानी में कैलाश को क्या हुआ, नारद मुनि आए थे, उसको बोला कि मैं तुमको वैकुंठ में लेके जाऊंगा, साथ आओ मेरे साथ। उसने बोला कि मेरे जी इतने जिम्मेदारियां हैं, समय नहीं है मेरे पास, बोला उन्होंने, मैं बाद में आता हूँ। उसके बाद कैलाश के बेटे हो गए, उसके बेटे के बच्चे हो गए, और बेटे के बच्चे को लेके जाते थे वॉकिंग के लिए है? तो इस तरह समय बिता रहे थे। नारद मुनि आकर पूछा कि कब आने वाले हो, उसके बाद वो मर गए हो कैलाश, मरकर क्या क्या कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया उनको, तो उसी घर के बाहर खड़े होकर भौंक रहे थे वो है? और तभी भी नारद मुनि ने बोला अभी भी तुम आ सकते हो मेरे साथ, कैलाश ने बोला अभी भी नहीं आऊंगा मैं, क्योंकि मुझे सुरक्षा कर घर को रक्षा करना है। कुछ समय के बाद नारद मुनि वो कुत्ता भी मर गया था, उस सर्प बन गए थे वो, घर के पीछे वो केती बाजी को केती जो है उसको संभालने के लिए घूम रहे थे सर्प के रूप में। नारद मुनि बोला कि अरे अभी भी तुम आ सकते हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अभी भी मेरा जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया मैंने। तो नारद मुनि ने उसके बेटों को बुलाकर बोला कि तुम्हारे घर के पीछे सर्प मार डाला उसको। तो जब उन्होंने मारा, नारद 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 चिल्लाया, वो नारद का नाम चिल्लाते हुए अगले जन्म में उसको भक्त का जन्म मिल गया, और भक्ति करके भगवान चला गया वो। तो इस तरह दुनिया में लोगों को बोलो भगवान के लिए समय दो, लोग बोलते हैं भगवान के लिए समय देना ही है लेकिन अभी नहीं, बाद में देंगे हम, इस तरह बाद में करके मृत्यु आ जाता है, तब तक कोई समय नहीं देते हैं भगवान को ऐसे। इसलिए ये लोग बहुत बुद्धिमान है, ये स्वामीनारायण लोग क्या क्या उन्होंने, ठीक है तुमको पूरा जीवन देने की जरूरत नहीं है, कितना साल दो, 5 साल दो बाद। कितने लोग अच्छा लगा सिस्टम, अच्छा लगा आपको? हाँ वेरी गुड, श्वेती को अच्छा सिस्टम है ना। तो ये ऐसे हम लोग अलग अलग जगह जाकर हमने सीखा, ऐसे अलग अलग मंदिरों में से मैंने नोट्स वगैरह लिया, उनका पावर पॉइंट लिया, पैम्पलेट्स लिया, आइडिया मिला हमें, लोग कैसे कितना कठोर परिश्रम करते हैं लोग है? अमेरिका में, लंदन में, एक्चुअली भारत के जैसे अभी गोपाल आचार्य प्रभु की बेटी है और उनके पति वो दोनों जानकी माता और गौरंग प्रेम प्रभु, उनको मिला मैं लॉस एंजेलिस में, दिन रात उनका सेवा होता है उधर, सुबह मंदिर में चले जाते हैं, इतना सेवा रहता है, बैकअप करना है, भगवान के लिए ड्रेस स्टिचिंग करना है, जोरदार सेवा करते हैं वो लोग। कभी कभी लगता है कि मुझे भारत में उतना सेवा नहीं मिलते हैं जितना उनको उधर ज्यादा सेवा मिलता है, और अनेक लोग अपने गुरु को बहुत आसानी से मिल लेते हैं उधर, क्योंकि फॉरन में गुरु लोग जो है वो उनको मिलना और भी आसान है, भारत से भी ज्यादा आसान। तो कभी कभी भारत के लोगों के बीच में गलतफहमी है कि फॉरेन जो जाते हैं वो लोग भक्ति कर नहीं पाते हैं वगैरह, वो लोग बहुत सीरियसली भक्ति कर रहे हैं, मैं खुद आंखों से देखा, क्योंकि मैं लगभग 15-16 केंद्रों में गया था, मैं हर दिन दो दिन एक एक सेंटर में इतना और अगले सेंटर में जाना है, इसे हम जा रहे थे, बहुत गंभीरता से चल रहा है। तो ज्यादातर इंडियन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अमेरिकी लोग कुछ केंद्रों में ज्यादा संख्या में हैं, जैसे न्यूयॉर्क में, लॉस एंजेलिस में, पोर्टलैंड में अमेरिकी लोग ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और बाकी केंद्रों में जिधर मैं कहता था ज्यादातर इंडियन लोग हैं, लेकिन इंडियन लोग उधर भी मंदिर में आकर भाग लेते हैं भक्ति में पूर्ण तरीके से, क्योंकि वो लोगों ने बोला कि अमेरिकी जीवन का स्टाइल ही कैसा है, उनका जीवन का शैली कैसा है, हर एक का घर अलग अलग होता है, कोई भी अपने घर छोड़कर दूसरे के घर में जाता नहीं है। अभी इंडिया में क्या होता है, अभी नवरात्रि के समय अब दक्षिण भारत में आप देखेंगे तरह तरह के खिलौनों को रखते हैं, मालूम आपको, खिलौनों को सीढ़ी बनाकर रखते हैं उसमें, और दूसरे लोगों को जाकर बुलाते हैं उनके घर में, आओ अपने घर में, तो कभी कभी वो वृंदावन भी बनाते हैं अपने घर में, घास फूस वगैरह लगाकर, कृष्णा और गोपियां नाचते हुए रास नृत्य वगैरह ये सब बनाते हैं लोग, और दूसरे लोग आते हैं उसको देखने के लिए, और वो जाते समय उनको कुमकुम देते हैं, कुछ कपड़े देते हैं, नहीं तो कभी कभी केले वगैरह कुछ फल देते हैं, और वो लोग इनको बुलाएंगे उनके घर में, ये लोग उधर जाएंगे। इस तरह एक दूसरे के घर में जाना और एक दूसरे को स्फूर्ति देना, भारत में जो है समाज ऐसा समाज है, समाज एक परिवार के समान है भारत में। गांव में अगर एक स्त्री का शादी होता है तो सब लोगों को पता चल जाता है ना, और एक लड़का शहर में गए तो सब लोग जानते हैं उसको, लेकिन अमेरिका में अपने पड़ोस के घर के बारे में मालूम नहीं कौन है, कोई भी किसी को मिलने के लिए जाते नहीं है, पूरा एक रेगिस्तान के समान है। बाहर मैं सुबह वॉकिंग के लिए जाता था, तो जब हम जाते हैं ये वॉकवे में, एक भी मनुष्य दिखाई नहीं देगा रोड में आपको, सिर्फ कार ही कार चलते हैं रोड में हमेशा, सबके पास कार है। ऐसे तो हम भारतवासी लोग बोलते थे मुझे जब मैं गया कि हम लोग इधर आकर भक्ति में सीरियस बन गए, क्योंकि भक्तों का संग से ही हमारा जीवन इधर चल सकता है, क्योंकि अगर हम भक्तों के बीच में नहीं रहेंगे तो बच्चे सब बर्बाद हो जाएंगे, बच्चे दूसरे बच्चों अमेरिकी बच्चों से मिलकर वो पूरे बर्बाद हो जाएंगे, उनको उनके चरित्र को संभालना कठिन है, इसलिए हम भक्त लोग एकदम निकट रहते हैं, एक दूसरे को मदद करते हुए वो लोग अपने जीवन को चलाते हैं ऐसे उधर। तो उधर प्रचारकों की इतना कमी है और जरूरत है, जब हम गए थे लोग छोड़ नहीं रहे थे कुछ मंदिर कुछ जगह में, मैंने बोला फ्लाइट टिकट ऐसे बुक किया था एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, हर दो दिन हम एक एक जगह चल रहे थे ऐसे, तो कुछ सेंटर में लोग पकड़े रखा, बोला कि हम आपको कैंसिल करके दो दिन के बाद हम बुकिंग करेंगे, आप ठहर जाओ ऐसे, मतलब बहुत प्यासे हैं सुनने के लिए, हालांकि उनको सुनने को मिलता है उनको इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट में अनेक लेक्चर मिलते हैं, फिर भी वो भक्तों को मिलना चाहते हैं, भक्तों को मिलना चाहते हैं, और उन्होंने बोला कि अनेक जगह में उन्होंने बोला भक्तों को भेजो रेगुलर भेजो ऐसे। तो ऐसे कृष्ण भावनामृत सारे दुनिया में फैल रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी ने इसको इग्नाइट किया शुरू किया ऐसे। तो अगर हम भक्ति में एक भक्त का एक खास उदाहरण में बता सकता हूँ, वो मेरे कार चला रहे थे, मेरे साइड में बैठकर मैं बैठा था, उनकी पत्नी पीछे बैठी थी, उनके बच्चे और कुछ लोग उनके बच्चे बैठे थे पीछे, तो उनकी वाइफ जो है वो लोग महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र से ही, वो देखा कि पति जो गाड़ी चला रहे थे उनको किसी और भक्त को पिकअप करना था आंधे, लेकिन वो इधर गए उधर गए हैं, अचानक तो आधा घंटा चला गया पिकअप करने में, तो उनकी पत्नी उनको डांट रही थी मराठी भाषा में पूरे पति को, तो बीच में मुझे देखा, प्रभु जी आपका मातृभाषा क्या है पूछा मुझे, मैंने बोला मेरा मातृभाषा तमिल, तमिल है, हाँ ठीक है, आपको आपको मराठी आता है, मैंने बोला नहीं ज्यादा आता नहीं थोड़ा थोड़ा आता है, नो प्रॉब्लम, और चिल्लाने लगी वापिस तो ऐसे चल रहे थे उनको। उसके बाद वो भक्त को मैंने मिला, वो प्रभु जी को मिला बाद में, वो प्रभु जी मुझे मिले के और बोले कि मुझे हर एक शब्द मालूम पड़ गया मुझे वो क्यों जो बोल रहे थे वो, क्योंकि उतना कठिन नहीं है मराठी समझना, हम तो महाराष्ट्र में इतने सालों से हैं। तो मैं क्यों बोल रहा था, वो भक्त बता रहे थे कि हालांकि मेरी पत्नी डांटती है, आपने देखा मेरी पत्नी डांटती हुई, लेकिन ये जो आल्टर जो है उसको वो डेकोरेट करती है, कोई भी उसके समान डेकोरेट नहीं कर सकता मेरी पत्नी जैसे। और बोला कि जो कुकिंग करते हैं भगवान के लिए भोग, कोई भी कुकिंग इतना टेस्टी नहीं कर सकता मेरी पत्नी जैसे, तो इस तरह वो अपने पत्नी गुणगान कर रहे थे। और उन्होंने बोला कि इसलिए वो जो है वो बहुत एक्टिव है और बहुत ब्रिलियंट है, वो बहुत क्या है वो एक्टिव मीन्स बड़े उत्साही है, उत्साही नहीं क्रियाशील, हाँ बहुत क्रियाशील है और बहुत बुद्धिमान, इसलिए उन्होंने बोला कि भारत में मुझे और भी ज्यादा ज्ञान मिलता था पहले, और इधर अमेरिका आने के बाद इतना उसको सेवा मिल गया, उसको सेवा में लगा तो वो शांत रहेगी वो बोला उन्होंने। तो एक चीज मुझे सीखने को मिला कि जो भक्ति में परिपक्व होते हैं वो लोग इतना भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो, समस्या हो, वो बहुत परिपक्वता के साथ, शांति के साथ वो अपने जीवन चला सकते हैं। और वो बता रहा था वो व्यक्ति, हालांकि गुरु जी आपके सामने जो थोड़ा डांटा आपको बुरा लगा होगा आपको, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे जो है उसको मैं संभाल नहीं सकता, लेकिन ये संभालती है, क्योंकि इसका जो जोश है इसके भी जरूरत है परिवार में, कम से कम माँ नहीं तो बाप दोनों में से एक ऐसा होना चाहिए, है ना। तो इसके कारण वो बच्चे को कठपुतल के समय लगती है, छोड़ते नहीं। और अमेरिका में हम लोग आ गए फिर भी वो क्या करती है, इनको सब सिखाया है उन्होंने भक्तिमय जीवन, बच्चे माला करते हैं, मंगलारती करते हैं, वो भक्तिमय स्थित रहते हैं, गलत संग में फंस नहीं जाते हैं, ये सब चिंता करते हैं, इसलिए मैं इसके डांटने को भी मैं परवाह नहीं करता, ऐसे बता रहे थे। ऐसे हमें अनेक अनुभव मिले अलग अलग जगह में, जब लोगों द्वारा लोगों को मिला। एक्चुअली मैं ज्यादातर विद्यार्थियों को प्रचार किया है भारत में, और हम विद्यार्थियों को लाते हैं बार बार, अनेक कॉलेजों में जाते हैं, विद्यार्थी आते हैं बड़ी संख्या में। हम कांग्रेगेशन कार्यक्रम में सिर्फ हम जाते हैं, कार्यक्रम देकर हम वापिस आ जाते हैं, ज्यादा हमें देखने को मिलता नहीं है, लेकिन अमेरिका में बहुत मौका मिला अनेक लोगों को देखने के लिए। और परिवार में रहकर भी जितना भी कठिनता हो, तकलीफ हो, तो मैं जो पुरुष के बारे में बोल रहा था आपको, वो अपने बच्चों को कितना भक्ति देने के लिए प्रयत्न कर रहा है उधर, मैं देखने को मिला मुझे। हाउ द सिंसियर डिवोटीज आर एंड हाउ दे आर स्ट्रगलिंग टू कीप द फैमिली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड हाउ दे आर अवॉइडिंग द सत्संग इन अमेरिका, आई गॉट टू सी विथ माय ओन आईज एंड आई गॉट टू सी द सिंसियरिटी ऑफ कॉन्ग्रीगेशन डिवोटीज। हो सकता है कि आप में से भी अनेक लोग बहुत गंभीरता से प्रैक्टिस करते होंगे, सुबह जल्दी उठकर 4 बजे उठना, 5 बजे उठना, मंगल आरती, नरसिंह आरती। आप में से कितने लोग मंगल आरती, नरसिंह आरती करते हैं अपने घर में, हाथ ऊपर करिए। ओ वेरी गुड, लगभग 30-40 लोग हैं। आप में से कितने लोग आपके ऑफिस जाने के पहले 12 माला पूरा कर देते हैं, कम से कम 12 माला? हाँ, वेरी गुड। आप में से कितने लोग प्रचार करते हैं, ये कार्यक्रम कम से कम आप प्रचार करते हैं, यू आर टीचिंग टू समबडी। आप में से कितने लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कम से कम हफ्ते में एक दिन? ओके, तो थैंक यू। हम भविष्य में हम सोच रहे हैं कि पुणे में भी हम, मुकुंदानंद प्रभु को एक पत्र लिखा था मैंने कि पुणे में भी हम हरिनाम शुरू करेंगे, कोने कोने में। आप लोग महीने में एक बार भाग ले सकते हैं, ऐसे अलग अलग कोने में शुरू करेंगे, ब्रह्मचर्य लोग आकर शुरू करेंगे, और आप लोग ऐसे होना चाहिए धीरे धीरे कि मंदिर के पूरे छलाना कौन देना चाहिए, कांग्रेगेशन देना चाहिए, अमेरिका देश है ना। देखिए पहले गोविंद दास को ब्रह्मचारी चलाते थे, मालूम है आपको, उसके बाद कांग्रेगेशन लोगों को छोड़ा है, वो लोग चलाते हैं। पहले हम बुक स्टॉल जो है हम चलाते थे, अभी कृष्ण कथा प्रभु चला रहे हैं कांग्रेगेशन, अभी किचन को भी मुरारी प्रभु और दूसरे ब्रह्मचालक चलाते थे, अभी सिद्धनता चंद्र प्रभु किचन रहने के बाद इतना परिवर्तन लाया है उन्होंने किचन में ऐसे। और मंदिर के अनेक डिपार्टमेंट्स को ब्रह्मचारी चलाते थे, उसको अभी श्याम रूप प्रभु चला रहे हैं ऐसे। अभी नए मंदिर के कंस्ट्रक्शन भी जो है उसमें अनेक ब्रह्मचारी लोगों को हाथ डालना पड़ा और उनको बहुत समय देना पड़ा। आजकल जयदेव प्रभु राधा वृंदावन चंद्र मंदिर और सनातन चैतन्य प्रभु बालाजी मंदिर, ये दोनों पूरे करने के लिए जिम्मेदारी लिया है उन्होंने ऐसे। और शैद्य प्रभु, राष्ट्र विग्रह प्रभु, विजय गोपाल प्रभु, ऐसे अनेक भक्त लोगों ने अनेक जिम्मेदारी लिया है। तो हम आप गृहस्थों के लिए वैराग्य का मतलब क्या है, मैक्सिमाइज कृष्णा टाइम, मिनिमाइज माया टाइम, यही मेरा संदेश आपको। हिंदी में कौन बोल सकते हैं, मैक्सिमाइज कृष्णा टाइम, मिनिमाइज माया टाइम, कौन बोलेंगे हिंदी में? माइक देना किसी को, अनुवाद करिए इसको। मालूम नहीं कितने लोग समझ गए? ओके, तो जितना हम ज्यादा दे सकते हैं कृष्ण के लिए समय हमें देखना चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया,
सुबह शाम, इसका मतलब नहीं है कि आप घर के जिम्मेदारियों को छोड़ दो, क्योंकि जिम्मेदारी से आप बाध नहीं सकते हैं, उसको भी करना है। लेकिन घर के जिम्मेदारी करने के बाद जो समय मिलता है, अनेक लोग उसका पूरा सदुपयोग नहीं करते हैं उसका, जो समय मिलता है। तो इस तरह हमारा समय, हमारा पैसा, हमारा शक्ति, हमारी बुद्धि, ये सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अभी नया मंदिर की जो कलेक्शन है, मैंने सुना था कुछ महीने के पहले 8 करोड़ था। उसके बाद मैं वापस आकर पूछा, अभी क्या 12 हो गया 13 हो गया पूछा मैंने, वो लोगों ने बोला कि अभी 9 भी नहीं पहुंचा है, 9 तक भी है ना। तो अभी थोड़ा स्लो डाउन हो गए ऐसे बोला था उन्होंने, लेकिन अभी जन्माष्टमी आने वाला है, बहुत कम समय है। तो इस तरह के परिस्थिति में जब फेस्टिवल लग रहा है, मेरा विनती है आप लोगों से इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी के समय सब लोग एक अच्छे मूड में होते हैं भगवान को देने के लिए, है ना। किसी के पास भी जाओ, बोले कि जन्माष्टमी है, इंग्लिश नजर है, नया मंदिर आने वाले हैं, आप दिखाइए, तुरंत दे देंगे आपको। तो हमारा मंदिर एक बड़ी से यूनिक हमारा मंदिर एक विशेष मंदिर है, जिसमें कांग्रीगेशन साथ में आकर 8 करोड़ कलेक्शन किया है। क्योंकि ज्यादातर मंदिरों में बड़े बड़े धनी लोग आकर 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे देते हैं, लेकिन हमारे मंदिर में कोई ने, किसी व्यक्ति ने ऐसे दिया नहीं है। लोग मैक्सिमम 5 लाख 10 लाख ऐसे दिया है। तो आप लोगों ने ऑलरेडी किया है, लेकिन अभी जन्माष्टमी आने वाला है जल्दी ही जल्द। तो आने वाले कितने दिन बाकी है? 15 दिन, सिर्फ 15 दिन बाकी है। आप लोग अच्छी तरह से इसमें भाग लीजिए। एक्चुअल दिस इज डिटैचमेंट फॉर एग्जास्टेड डिवोटी। डिटैचमेंट मीन्स एंगेज मोर एंड मोर इन कृष्ण सर्विस। एंड ऐसे करने से क्या है, हम मायावी दुनिया से हम दूर भी रह सकते हैं, कृष्ण चेतना को बढ़ा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो जैसे मैं बताया था आज के प्रवचन के शुरुआत में, भगवान भगवद्धाम में क्या क्या लीलाएं करते हैं, कितना मधुर लीलाएं करते हैं, और हम भी इन लीलाओं में भाग ले सकते हैं। इसी जन्म में हम हमारे जन्म मृत्यु के चक्र को खत्म करके भगवान के पास लौट सकते हैं। लेकिन ये लौटने के लिए क्या है, हमारे चित्त को पूर्ण तरीके से प्रभु के चरणों में न्यौछावर करना पड़ेगा हमें, तभी तो हम जाएंगे भगवत धाम, नहीं तो कैसे, है ना। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरे जीवन जो है किस तरह चल रहा है, इसका शोधन करना चाहिए। कैसे मेरा जीवन चल रहा है, क्या ये एक्चुअली भौतिक दुनिया में समय भौतिक शरीर और आत्मा, हमारे आत्मा और भौतिक शरीर को साथ में रखने के लिए परिश्रम करना ही होता है, लेकिन उस परिश्रम में हमें डूब नहीं जाना चाहिए पूरा, कि भगवान के लिए समय नहीं है। ऐसे हमारे कांग्रेगेशन बड़ा कांग्रेगेशन है, पुणे में लगभग 1000 लोग हैं, अगर पुणे में कितने दीक्षित भक्त हैं, पुणे में लगभग 500 दीक्षित भक्त हैं, कार्यक्रमांतु 500, अगर हर एक दीक्षित भक्त 2 कार्यक्रम देंगे हफ्ते में तो 1000 कार्यक्रम हो जाएगा पुणे में, इतना कार्यक्रम कर सकते हैं। तो मेरा विनती है आप सब भक्तों से, आप लोग अच्छी तरह भाग लीजिए ये जन्माष्टमी के कार्यक्रम में। पहला चीज है हमारे खुद की साधना, खुद की साधना और प्रोग्राम अटेंड करना, ये सब पक्का करना चाहिए। उसके बाद हम इसको दूसरों को जन्म सार्थक खोली और पर्व पक्का दूसरों को देना चाहिए। शिल्पोपाद की